सप्तम अध्याय कबीर और भगवत भक्ति जीवन वृत्त। संत कबीर के जीवन वृत्त से संबंधित निम्नांकित पंक्तियाँ कबीर ग्रंथावली में मिलती हैं। तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, चिन्ह न मोर ज्ञाना, तैं सब मांगे भूपति राजा, मोरे राम धियाना। पूरब जन्म हम ब्राह्मण होते, वो छह कर्म तपहीनाम, राम देव की सेवा चूका, पकरी जुलाहा कीना। पद 250। आस पास धन तुलसी का बिरवा, मांझ बनारस गाँव रे। पद 18 पृष्ठ 269। जाति जुलाहा मति को धीर, हरषि हरषि गुण रमय कबीर। पद 124। जाति जुलाहा नाम कबीरा, अजहु पतिजो नाही, कबीर जुलाहा भया पारशु, अनभय उतन्या पार। पृष्ठ 16 दोहा 47। आई हमारे कहा करोगी, हम तो जाति कमीना, जाति जुलाहा नाम कलीरा, बनी बनी फिरो उदासी। पद 270। कहत कबीर मोहि भगति उमाहा, कृत करनी जाति भया जुलाहा। पद 271। तिनकु मुक्ति का संसा नाही, कहत जुलाहा कबीरा। पद 317। हरि को नाम अभय पद दाता, कहे कबीरा कोरी। पद 346। ऊपर उद्धृत पंक्तियों में कबीर अपने को काशी का निवासी और कोरी या जुलाहा जाति का कहते हैं। वस्त्र वयन का कार्य करने वाले हिंदुओं में कोरी और मुसलमानों में जुलाहा कहलाते हैं। कबीर मुसलमान घर में पालित पोषित हुए थे, अतः वे परंपरागत पितृ व्यवसाय के आधार पर अपने को जुलाहा कहते हैं, परंतु उनके अंतस्थल के किसी कोने में हिंदुत्व तो भी छिपा पड़ा है, अतः व्यवसाय के आधार पर ही वे अपने को कोरी भी कह देते हैं। यह हिंदुत्व तो उनके अंदर कुछ ऐसा घर किए हुए है कि वे इस जन्म में नहीं तो विगत जन्म में अपने को अवश्य ब्राह्मण वर्ण का अनुभव करते हैं। ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न होकर भी वे विगत जन्म में निंद्य कर्म करते रहे, तब से विहीन रहे और भगवत भक्ति भी नहीं कर सके, इसी हेतु भगवान उन्हें पकड़कर इस जन्म में जुलाहा बना दिए। ऐसा वे संभवतः कर्म फल का महत्व प्रकट करने के लिए कह रहे हैं। और यदि योगाभ्यास के बल से उन्हें दर्शन सिद्धि प्राप्त हो गई हो और वे अपने विगत जन्म को देख सके हो, तो यह कथन यथार्थवाद का रूप भी धारण कर सकता है। कबीर भक्त थे। जहाँ अन्य व्यक्ति राजाओं की स्तुति करते हैं और उनसे याचना करते हैं, वहाँ कबीर राम के ध्यान में मग्न रहते थे। वे भगवान के नाम स्मरण को मुक्ति एवं अभय पद का प्रदाता भी समझते थे। कबीर के पारिवारिक वृत्त पर निम्नांकित पंक्तियाँ प्रकाश डालती हैं। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवही रघुराई, तनन बुनना सब तज्यो है कबीर, हरि का नाम लिखी लियो शरीर। कहत कबीर सुनहु मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। पद 166 पृष्ठ 317। यह पद कबीर ग्रंथावली के पृष्ठ 95 पर इस प्रकार मिलता है। सनना बुनना तज्या कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर, जब लग भरो नली का वेह, तब लग टूटे राम स्नेह। थाली रोवे कबीर की माई, ए लड़िका क्यों जीवे खुदाई, कहे कबीर सुनहुरी माई, पूरण हारा त्रिभुवन राई। पद 21। मेरी बहुरिया को धनिया नाऊ, ले राख्यो राम जनिया नाऊ, इन मुंडियन मेरा घर धुधरावा, बिट वही राम रमोवा लावा। कहत कबीर सुनहु मेरी माई, इन मुंडियन मेरी जाति गवाई। पद 167 पृष्ठ 317 परिशिष्ट। बूढ़ा वंश कबीर का, उपज्यो पूत कमाल, हरि का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। दोहा 185 पृष्ठ 263। बाप राम सुनी बीनती मोरी, तुम सु प्रगट लोगन सु चोरी, पहले काम मुगध अति की मुगध मति किया, ताभे कपे मेरा जिया। पद 357 पृष्ठ 207। कबीर मुंडियो रामानंदी साधुओं के सत्संग से प्रभावित हो अपने पैतृक व्यवसाय वस्त्र वयन में मन नहीं लगाते थे। उन्हें हरि नाम के जाप में सुख मिलता था। कबीर की माँ इसे अनुभव करके चुपचाप रोया करती थी। जब व्यवसाय ही नहीं चलेगा तो बालकों का पेट पालन कैसे होगा। यही उसके रुदन का कारण था। कबीर अपनी माँ को यह कहकर समझाया करते थे कि हम सबका भरण पोषण भगवान द्वारा होता है, जब वह कुशल क्षेम का वहन करने वाला विद्यमान है तो चिंता किस बात की। कबीर का विवाह हुआ था, उनकी स्त्री का नाम धनिया था, पर साधुओं के संसर्ग से राम रमौवा अर्थात राम में रमण करने वाले भक्त बन गए थे, अतः उनकी पत्नी को भी लोग रामजनी अर्थात भगवान की भक्तिन कहा करते थे। ब्राह्मणी साधुओं के साथ रहकर कबीर अपनी जुलाहा जाति या मुसलमानी पन से भी मुक्त हो चुके थे। स्वामी रामानंद के संप्रदाय में जाति पाति का भेद नष्ट कर दिया गया था। सभी भगवत भक्ति की दीक्षा लेकर एक स्तर पर आ गए थे। कबीर अपनी प्रारंभिक वैवाहिक अवस्था में काम मुग्ध थे, ये इस वासना जन्य संस्कार को लोगों से छिपाए रहते थे, पर भगवान से तो कोई बात छिपी नहीं रहती। इसी हेतु वे कांपते हुए हृदय से भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन द्वारा अपने दोषों के प्रक्षालन की याचना करते हैं। जनश्रुति के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम लोई था, संभव है उसी का नाम धनिया भी रहा हो। कबीर ग्रंथावली के पृष्ठ 48 पर तीसरे दोहे 26 संगति को अंग के अंतर्गत लोई नाम आया है। कबीर ने इस दोहे में लोई की प्रशंसा की है। वह जल में बहती हुई आई थी, फिर भी उसका रंग ज्यों का त्यों बना हुआ था। करिए तो करी जानिए सारी सासु संग, लीर लीर लोई थई तौं न छाणे रंग। आध्यात्मिक पक्ष में इसका अर्थ यह होगा कि कोई व्यक्ति चाहे जहाँ घूमाए पर अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति का परित्याग नहीं करता। पर कबीर ग्रंथावली परिशिष्ट पृष्ठ 296 में लोई का जो कथन है उससे प्रकट होता है कि लोई को कबीर का राम नाम जाप अच्छा नहीं लगता था। यथा तुरी नारी की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता, लड़की लड़िकन खैबो नाही, मुंडिया अनुदिन धाये जाही। पद 109। कबीर अपने व्यवसाय को छोड़कर राम नाम में मन लगाते हैं। संतान के भोजन का प्रबंध नहीं पर साधुओं की सेवा दौड़ दौड़ कर की जाती है। लोई के रुष्ट होने का यही कारण था। कबीर ने समझा लोई अंधी है, इसे भक्ति का उज्जवल भविष्य रूपी फल दिखाई नहीं देता, यह बेपीर है, निर्मम है, तभी तो संतों को खिलाने में आनाकानी करती है। अतः कहने लगे सुन अंधा सी लोई बेपीर, इन्हीं मुंडियन भजी शरण कबीर। गृहस्थ का कार्य धन के अभाव में नहीं चल पाता। कबीर वैरागी थे, वे धन की ओर से उदासीन ही नहीं रहते थे, उसे काम के समान भक्ति मार्ग में बाधक भी समझते थे। गृहस्थ की इसी समस्या के कारण पति पत्नी दोनों में अनबन रहा करती थी। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखकर कबीर नीचे लिखे पद में लोई को समझा रहे हैं। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तिही रावण घर खबरी न पाई, क्या मांगो किछ थिर न रहाई, देखत नयन चलियो जगनाथ जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, सिंह रावण घर दिया न बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, वह संतर जाके कपड़े धोई, गुरुमति रामे नाम बसाई, अस्थिर रह न कबहू जाई, कहत कबीर सुनहु रे लोई, राम नाम बिन मुक्ति न होई। पद 185 पृष्ठ 322 कबीर ग्रंथावली परिशिष्ट। पृष्ठ 165 पद संख्या 229 में कबीर ने दो स्त्रियों का वर्णन करते हुए लिखा है, पहली को घाल्यो भरमत डोल्यो, सच कबहू नहीं पायो, अब की घरनी धरी जा दिन थे, सगलो भरम गमायो। तो क्या कबीर के दो विवाह हुए थे? दो स्त्रियों के नाम हम अभी लिख चुके हैं, धनिया और लोई। इनमें कौन सी स्त्री प्रथम विवाहिता थी कहा नहीं जा सकता। पृष्ठ 305 पद संख्या 136 में भी कबीर ने अपने दो विवाहों की ओर संकेत किया है, पहली कुरूप कुजाति कुलक्षिणी, चाहुरे पेये दूरी, अब की स्वरूप सुजाति सुलक्षिणी, सहजे उदर धरी, भली सरी मोई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी। यहाँ कबीर पहली स्त्री को विवाहिता या परिणीता और दूसरे को धरी हुई बिना विवाह संस्कार के ही जिसे घर में स्त्री की तरह रख लेते हैं कहते हैं। पृष्ठ 275 पर पद संख्या 38 में कबीर लोई को संबोधित करके कहते हैं, कहत कबीर सुनहु रे लोई, अब तुम्हारी परती न होई। जिस लोई का विश्वास न करने के लिए कबीर यह कथन कर रहे हैं वह लोई इसी पद की निम्नांकित पंक्तियों में कबीर पर कितना विश्वास प्रकट कर रही है। करवत भला त करवट तोरी, लाग गले सुन बिनती मोरी, जो तन की रही अंग व मोरो, पिंड परे तो प्रीत न तोरो। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम ही सुकंत नारी हम सोई। हे प्रिय, मैं तेरे करवट की अपेक्षा करवट लेना, सिर पर आरा रख कर अपने को चिरवा देना अच्छा समझती हूँ। तू मेरी विनय सुन और मेरे गले से लग, तू मेरे शरीर को भी चीर डाले तो भी मैं प्रेम पद से हटने वाली, अंग मोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे और तुम्हारे बीच में पड़ने वाला कोई भी नहीं है, तुम ही मेरे पति हो और मैं तुम्हारी वही प्रथम जन्म की पत्नी हूँ। इस कथन से ऐसा भी संकेत निकल सकता है कि धनिया कबीर की प्रथम विवाहिता पत्नी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात कबीर ने लोई को अपनी पत्नी बना लिया था। कबीर के एक पुत्र था जिसका नाम कमाल था। भगवत भक्ति में तो नहीं पर उसका मन धनोपार्जन में खूब लगता था। उद्धृत दोहा ऐसा ही संकेत देता है। परंतु पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा के पृष्ठ 246 से 251 तक कबीर के पुत्र कमाल के जीवन वृत्त पर जो विचार किया है, उससे धनोपार्जन वाली घटना पर नवीन प्रकाश पड़ता है। और संत कमाल अत्यंत विनयी, निराभिमानी तथा उच्च कोटि के भक्त सिद्ध होते हैं। चतुर्वेदी जी ने दुख हरण कृत भगत माल की हस्तलिखित प्रति का प्रमाण देते हुए लिखा है कि एक बार कोई राजा कबीर साहब का शिष्य बनने के लिए बहुत सा धन लेकर काशी आया। कबीर को धन लेना अनुचित प्रतीत हुआ, अतः वे वहाँ से चले गए। राजा ने कबीर की अनुपस्थिति में उनके पुत्र कमाल को अपना गुरु बना लिया और उन्हें सारा धन दे दिया। जब कबीर को इस घटना का पता चला तो वे कमाल पर क्रोधित हुए। ऊपर उद्धृत दोहा संभवतः इसी घटना से संबंध रखता है। कमाल ने कबीर के क्रोध को शांत करते हुए कहा कि राजा के धन ने उनकी राम भक्ति को मोल नहीं ले लिया, भला उस अमूल्य राम का मोल कोई धन द्वारा कैसे दे सकता है। एक घटना ग्वालियर की किसी महाजन द्वारा कमाल की पगड़ी में हीरे के एक खंड के रख देने की भी कही जाती है। कमाल आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इससे भी कबीर के वंश के डूबने की किंवदंती सिद्ध होती है। कबीर ग्रंथावली के निम्नांकित पद कबीर की सिद्धावस्था तथा तत्कालीन सुल्तान द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों का वर्णन करते हैं। मन न दिगे ताथ है तन न डराई, केवल राम रहे लेवलाई, अति अथाह जल गहन गंभीर, बांधी जंजीर जल बोरे हैं कबीर, जल की तरंग उठी कटी है जंजीर, हरी सुमिरत तट बैठे हैं कबीर, कहे कबीर मेरे संग न साथ, जल थल मैं राखे जगन्नाथ। पद 341 पृष्ठ 203 कबीर ग्रंथावली। अहो मेरे गोविंद तुम्हारा जोर, आजी वकीवा हस्ती तोर, बांधी भुजा भले करी डालियो, हस्ती कोपी मूंड में मान्यो, भाग्यो हस्ती चीसा मारी, वा मूर्ति की मैं बलिहारी, महावत तोपु मारो साठी, इसही मराओ घालो काठी, हस्ती न तोरे भरे ध्यान, वाके हृदय बसे भगवान, कहा अपराध संत हो कीन्हा, बांधी कोट कुंजर को दीन्हा, कुंजर कोट बहु बंधन करे, अजहु न सूझे काजी अंधरे, तीन बेर पतियारा लीना, मन कठोर अजहु न पतीना, कहे कबीर हमारे गोविंद, चौथे पद में जन का जंध। पद 365 पृष्ठ 210। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर लोधी के सामने मुल्लाओं ने कबीर के रोजा, नमाज, कलमा आदि इस्लामी सिद्धांतों के खंडन करने की शिकायत की, तो सुल्तान ने उन्हें जंजीरों में बांधकर अथाह जल में डुबो देने की आज्ञा दी। ऐसा ही किया गया, पर कबीर का मन इससे तनिक भी विचलित न हुआ और कबीर हरि का स्मरण करते हुए लहरों के साथ जल के तट पर आ बैठे। इसी प्रकार किसी समय उनके ऊपर 3 बार हाथी दौड़ाया गया, पर हाथी उन्हें कुचलने के स्थान पर उनकी वंदना करने में लीन हो गया। पृष्ठ 177 पद संख्या 261 में भी हाथी वाली घटना की ओर संकेत है। कबीर ग्रंथावली परिशिष्ट पृष्ठ 330 पद 215 में कबीर ने गोमती तट पर रहने वाले पीताम्बर पीर का नाम लिया है और वहीं अपना हज करने का स्थान माना है। इब्ज हमारी गोमती पीर, जहाँ बसही पीताम्बर पीर, नारद सारद करही खवासी, पास बैठी विधि कमला दासी। हमारी समझ में यहाँ पीताम्बर पीर से तात्पर्य भगवान राम से है। पद की आगे की पंक्ति के अनुसार कमला लक्ष्मी इन्हीं की दासी है तथा नारद और शारदा इन्हीं की सेवा करने वाले हैं। अतः इस पंक्ति से गोमती तटवासी किसी पीताम्बर पीर का अर्थ कबीर के लौकिक गुरु पर घटाना अनावश्यक है। कबीर ग्रंथावली में अनेक स्थानों पर कबीर ने अपने सद्गुरु का वर्णन किया है जो उन्हें प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ था और जिसकी कृपा से उन्हें ब्रह्म दर्शन हुआ तथा जिसके सहारे वे भव सागर से पार हुए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, पृष्ठ 2, दोहा 13। कहत कबीर गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जरता नजरी न आया, पृष्ठ 102, पद 42। सत गुरु मिली परचा भया, तब हरि पाया घट माही, पृष्ठ 81, दोहा 7। गुरु कृपाल जब कृपा कीन्ही, हृदय कमल बिगासा, भागा भ्रम दसों विशद सूझा, परम ज्योति प्रकाशा, पद 6, पृष्ठ 89। जिस गुरु ने ज्ञान का प्रकाश देकर इनके समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर दिया और हृदय कमल में विराजमान प्रभु से परिचय करा दिया, वह गुरु कौन थे इस बात का स्पष्ट उल्लेख कबीर ग्रंथावली में कहीं पर भी नहीं है। उसके पृष्ठ 68 पर नीचे लिखा दोहा उनके गुरु की ओर संकेत मात्र कर रहा है। कबीर गुरु बसै बनारसी, शीर्ष समंदा तीर, विसन्या नाही विसरे, ये गुण होई शरीर। कबीर के गुरु बनारस के निवासी थे। जब कबीर ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की तब समुद्र तट पर बैठकर उन्होंने यह दोहा लिखा था। बनारस के निवासी या प्रसिद्ध गुरु स्वामी रामानंद जी हो सकते हैं। परंपरा तथा बाह्य साक्ष्य स्वामी रामानंद को ही कबीर का गुरु स्वीकार करते हैं। कबीर इति विख्यात स पुत्रो मधुरानन 39। स सप्ताब्द वपुर भूत्वा गो दुग्ध पान तत्परम, रामानंदम गुरुम मत्वा राम ध्यान परो अभवत। 40। भविष्यत पुराण प्रतिसर्ग पर्व पृष्ठ 355 के बाद चतुर्थ खंड अध्याय 17। कहे कबीर सुनहु रे संतो भ्रमी। कबीर का जन्म काशी में हुआ था परंतु उनकी मृत्यु मगहर में हुई। इस तथ्य पर निम्नांकित पद किंचित प्रकाश डालते हैं। लोका मति के भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, सौ राम ही कहा निहोरा रे, तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहा, ज्यों जल में जल तैसी न निकसे, यूं ढोरी मिलिया जिलाहा। कहे कबीर सुनहु रे संतो भ्रमी पर जिनी कोई, जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई। पद 402 पृष्ठ 222। परम तत्व आधारी मेरे, शिव नगरी घर मेरा। पद 196 पृष्ठ 154। हृदय कठोर मरे बनारसी, नरक न बच्चा जाई, हरि को दास मरे जे मगहरी, सेन्या सकल तिराई। पृष्ठ 204 पद 345। ज्यो जल छोड़ी बाहर भयो मीना, पूरा जन्म हो तब का हीना, अब कहु राम कवन गति मोरी, तजिले बनारस मति भय थोरी, सकल जन्म से पुरी गमाया, मरती बार मगहर उठी आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरण भया मगहर की बासी, काशी मगहर सम बिचारी, ओछी भगती कैसे उतरसी पारी, कहु गुरु गजी शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम है। 103 पृष्ठ 295। तो भरोसे मगहर बसियो, मेरे मन की तपनी बुझाई, पहले दर्शन मगहर पायो, पुनी काशी बसे आई, जैसा मगहर तैसी काशी, हम एक करी जानी, हम निर्धन जो इह धन पाया, मरते फूटी गुमानी। 110 पृष्ठ 296। कबीर ने अपना समस्त जीवन काशी में तप करते हुए व्यतीत किया। एक पंक्ति से ऐसी भी ध्वनि निकलती है कि साधना की अवस्था में उन्हें सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन मगहर में हुए, इसके पश्चात वे काशी में स्थायी वास करने लगे। मृत्यु के समय वे निश्चित रूप से भगवान का आश्रय लेकर मगहर चले गए थे और वहीं पर उन्होंने श्री राम में रमण करते हुए अपनी ऐहिक लीला संवरण की। उनका विश्वास था कि जो राम का भक्त है उसके लिए शिव की काशी और मगहर जैसे ऊसर स्थानों में कोई अंतर नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि काशी में मरण सब व्यक्तियों को भव सागर से पार ही कर देता हो और मगहर में मरने से सबको गधे की ही योनि प्राप्त होती हो। बंधन और मोक्ष तो मन की अवस्था पर निर्भर है। यदि मन भगवान में अनुरक्त है तो जहाँ कहीं भी शरीर छूटेगा जीव की वहीं से सदगति मिल जाएगी। महत्व स्थान का नहीं, भगवान पर अविचल विश्वास रखने का है। मानसिक निर्माण। कबीर के मानसिक विकास पर अपने समय के वैष्णव तथा सूफी दोनों संप्रदायों का प्रभाव पड़ा है। नाथ पंथ के हठ योग का वर्णन भी उनकी रचनाओं में मिलता है। अतः इस पंथ की साधना पद्धति से भी वे प्रभावित हुए थे, पर अंत तक पहुँचते वे इनमें से किसी का भी साथ न दे सके। अपनी प्रतिभा से उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक जिन निश्चित मंतव्यों की घोषणा की है उनमें भगवत भक्ति, आडम्बर विहीन सदाचार पूर्ण जीवन तथा कथनी और करनी की एकता प्रमुख है। कबीर ग्रंथावली में अष्टपदी रामायणी के अंतर्गत पृष्ठ 239 पर उन्होंने इस्लाम के अनुयायियों के संबंध में निम्नांकित पंक्तियां लिखी हैं। तुर्की धर्म बहुत हम खोजा, बहु बजगार करे ए बोधा, गाफिल गर्भ कर अधिकारी, स्वार्थ अरति बधै ए गाई, जाको दूध धाई कर पीजे, ता माता को बध क्यों कीजे, लहुरे थके दूही पिया खीरो, ताका अहमक भखे शरीरो, वे अकली अकली न जा नहीं, भूले फिरे एलोई, दिल दरिया दीदार बिन भिष्ट कहाँ थे होई। इन पंक्तियों के अनुसार उन्हें मुसलमानों में धर्मांधता, गर्व, स्वार्थ परायणता, मूर्खता और क्रूरता अधिक दिखाई दी। हिंदुओं में भी उन्होंने मिथ्या अभिमान, आश्रम संस्था के संध्या तर्पणादि षट कर्मों का जगड़वाल तथा कथनी करने की अपार वैषम्य को अनुभव किया। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 207 पद संख्या 355 में क्या सिंगी मुद्रा चमकाए, क्या विभूति सब अंग लगाए लिखकर उन्होंने हठ योगियों के बाया डंबर की निंदा की है। इसी के आगे पद संख्या 356 में उन्होंने जीवत पित्र ही मार ही गंगा, मुआ पित्र ले धा ले गंगा, तथा जीवत पित्र हूँ अन्न न खावे, मुआ पाछे प्यंद फरावे आदि लिखकर हिंदुओं के श्राद्ध प्रथा को तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। जिन वैष्णवों की प्रशंसा से कबीर ग्रंथावली भरी पड़ी है उन वैष्णवों के दुराचार को भी कबीर सहन नहीं कर सकते थे। पृष्ठ 66 के दूसरे दोहे में वे लिखते हैं, संसारी शासक भला कुंवारी के भाई, दुराचारी वैष्णव बुरा हरिजन तहा न जाई, ब्रह्म कुल में भी उत्पन्न शास्त्रों को कबीर एक आँख नहीं देख सकते। उनकी दृष्टि में चांडाल योनि में उत्पन्न हुए वैष्णव शास्त्रों की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है, शास्त्र तो कुत्ते के समान है, शास्त्र तो सुनहा दो भाई, वो निंदे वो भूंकत जाई। पृष्ठ 163 पद 221 पर जहाँ सदाचार का प्रश्न उपस्थित होगा वे दुराचारी व्यक्ति को वैष्णव समझ कर भी सम्मान नहीं देंगे। सदाचारी ब्रह्मचारी शाक्त उनकी दृष्टि में दुराचारी वैष्णव से अच्छा है। उनके ऐसे निर्णय सिद्धावस्था के समय के हैं। साधक दशा में जो प्रभाव उनके ऊपर पड़े थे उन्हीं की चर्चा करना यहाँ अभिप्रेत है। सूफी प्रभाव कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 240 पर पांचवी रामायणी में कबीर ने सूफी सिद्धांतों का इस प्रकार उल्लेख किया है, आपन करता भय कुलाला, बहु विधि सृष्टि रची दरहाला, विधना कुंभ किए द्वैथाना, प्रतिबिंबता माही समाना, ज्यो बिंब ही प्रतिबिंब समाना, उदिक कुंभ बिगराना। पृष्ठ 148 पद 179 बहुत जतन करी बानक बाना, सौंज मिलाए जीव तहा ठाना, जठर अग्नि दी की पर जालो, तामे आप करे प्रतिवाली, भीतर थै जब बाहर आवा, सिर सकती द्वै नाम धरावा, जिन यहु चित्र बनाईया, सो साचा सुतधार, कहें कबीर ते जन भले, ये चितवत लेही विचार। पीछे हमने सूफी मान्यताओं के अंतर्गत प्रतिबिंबवाद का उल्लेख किया है। सूफियों का एक दल इस विश्व में परमात्मा की पड़ती हुई परछाई का समर्थन करता हुआ मानता है कि यह विश्व यथार्थ में परमात्मा नहीं उसका प्रतिबिंब मात्र है। प्रभु ने सृष्टि की रचना तो की है पर वह इसकी चर अचर रूपी दो घड़ों में स्वयं प्रतिबिंबित होकर समाया हुआ है। गर्भ की जठराग्नि से बच्चा जब बाहर आता है तब वही शिव और शक्ति पुरुष और स्त्री दो नाम धारण करता है। यह रचना चित्रकार द्वारा बनाए हुए चित्र या सूत्रधार द्वारा बनाई हुई कठपुतली के समान है। जैसे चित्र में चित्रकार स्वयं तो नहीं पर उसका मानसिक प्रतिबिंब प्रतिलक्षित होता है, उसी प्रकार सृष्टि में प्रभु स्वयं व्याप्त नहीं प्रत्युत प्रतिबिंबित हो रहा है। कठपुतली से सूत्रधार पृथक है पर उससे वही नचाया करता है। इसी प्रकार प्रभु इस समय प्रपंच के नियंता के रूप में इसके पीछे छिपा हुआ है। सूफियों का दूसरा दल प्रतिबिंबवाद को स्वीकार नहीं करता, वह सृष्टि को ईश्वर में से निकली हुई मानता है जो अंत में पुनः ईश्वरमय हो जाती है। इसे हम भारतीय अद्वैतवाद का प्रभाव भी मान सकते हैं। इस मान्यता के उदाहरण कबीर ग्रंथावली में अनेक स्थलों पर हैं। पर्चा को अंग के अंतर्गत पृष्ठ 13 पर निम्नांकित दोहा इसकी पुष्टि में उपस्थित किया जा सकता है, पानी ही तय हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। जैसे जल से हिम बनता है पर वह पिघल कर पुनः जल का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही जीव एवं जगत ब्रह्म से निकलकर पुनः ब्रह्म हो जाते हैं। सूफी मानते हैं कि अल्लाह ईश्वर सर्वप्रथम एक ज्योति को उत्पन्न करता है, इसी ज्योति से समग्र विश्व का निर्माण होता है। पृष्ठ 104 पर पद संख्या 51 में कबीर ने इसी मत का उल्लेख किया है। प्रेम प्रवाह को सूफियों की देन कहिए या वैष्णव प्रेमा भक्ति की, कबीर की रचनाओं में वह अत्यंत गंभीर रूप लिए हुए है। कबीर के ही शब्दों में प्रेम की कथा अकथनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका रस गूंगे की खाई हुई शक्कर के स्वाद के समान है, जिसे गूंगा अनुभव तो करता है पर बता नहीं सकता। अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, गूंगे केरी सर करा बैठे मुस्काई। पृष्ठ 145-156। नाथ पंथ का प्रभाव। कबीर ने नाथ पंथ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ का नाम बड़े आदर के साथ लिया है और उन्हें ब्रह्म ज्ञानियों तत्ववेत्ताओं के अंतर्गत स्थान दिया है। पृष्ठ 142 पद संख्या 163 में उन्होंने गोरखनाथ जी को राम गुण बेलड़ी अर्थात माया का जान लेने वाला लिखा है। पृष्ठ 189 पद संख्या 299 में भद्रिहरि भूप जैसे सर्वस्व त्यागी एवं विरक्त सन्यासी को गुरु गोरखनाथ के समान भगवत भक्ति का धनी माना है। पृष्ठ 51 दोहा संख्या 12 में गुरु गोरखनाथ कलयुग के अमर व्यक्ति और प्रभु का साक्षात करने वाले कहे गए हैं। साखी गोरखनाथ जीव अमर भये कलिमाही। पृष्ठ 99 पद संख्या 33 में मन के खोजियों का वर्णन करते हुए कबीर लिखते हैं कि सनक सनंदन जयदेव तथा नामदेव भक्त भी यह न जान सके कि शरीर के छूटने पर मन किसमें लीन होता है। शिव ब्रह्मा और नारद के समान ज्ञानी मुनीश्वर भी मन की गति को समझने में असमर्थ रहे। ध्रुव प्रहलाद विभीषण और शेष नाग तक शरीर के अंदर निहित मन का सम्यक दर्शन न कर सके। शुकदेव इस मन में कुछ लीन हो सके थे, परंतु गोरखनाथ भर्तृहरि और गोपीचंद उस मन से मिलकर आनंद मग्न हो गए थे। कबीर अपने को भी उस मन से मिला हुआ कहते हैं। यह पद कुछ रूपांतर के साथ पृष्ठ 328 के 208वें पद से समता रखता है। कबीर के इस कथन की हमें आलोचना नहीं करनी है, इसे उद्धृत करके हम केवल यही समझ लेना चाहते हैं कि गुरु गोरखनाथ और उनके अनुयायियों के संबंध में कबीर की भावना उच्च कोटि की श्रद्धा से सम्मिलित थी। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 198 पद संख्या 325 और पृष्ठ 213 पद संख्या 377 में उन्होंने हठ योग की क्रियाओं का वर्णन किया है। इन पदों से यह भी प्रकट होता है कि कबीर ने इन क्रियाओं का स्वयं अभ्यास किया था और सिद्धि स्वरूप ज्योति के भी दर्शन किए थे। वैष्णव प्रभाव। कबीर के जीवन पर वैष्णव प्रभाव विशेष रूप से पड़ा था। उनकी रचनाओं का अधिकतर भाग वैष्णव भक्ति से ही संबंध रखता है। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 49 साध को अंग के चतुर्थ दोहे में वे लिखते हैं, मेरे साथी दोई जना एक वैष्णव एक राम, वो है दाता मुकुति का वो सुमिरावे नाम। वस्तुतः कबीर के जीवन में वैष्णव संप्रदाय की सदाचार संवलित प्रेमा भक्ति और भगवान राम दोनों का ही प्राधान्य अंतिम समय तक बना रहा। राम नाम का अमृत पीकर वे मरकर ही अमर हो गए। भागवत भक्ति के प्रतिष्ठाता व्यास शुकदेव उद्धव अक्रूर हनुमान शंकर प्रहलाद ध्रुव विदुर तथा नारद का नाम उन्होंने अनेक बार लिया है। पृष्ठ 324 परिशिष्ट संख्या 194 में वे लिखते हैं, भगति नारदी हृदय न आई काची कूची चंदीना राग रागनी डिंग होई बैठा उन हरि पही क्या लीना। नारदी भक्ति कबीर ग्रंथावली पदावली पद संख्या 129 302 319 320 335 340 379 384 385 387 392 आदि इस संबंध में देखने योग्य है। वैष्णव भक्ति का ही अपर नाम है। जिसके हृदय में यह भक्ति स्थिर न हो सकी वह प्रभु से क्या प्राप्त कर सकता है। पद की अंतिम पंक्ति के शब्द कहु कबीर जन भये खलासे प्रेम भगति जिह जानी सिद्ध करते हैं कि कबीर की प्रेमा भक्ति यही वैष्णव भक्ति है। भागवतों के हरि और राम दो नाम भी कबीर को अत्यंत प्रिय हैं, जिन्हें वे अपनी साखियों पदों और रामायणियों में बार बार लेते हैं। पृष्ठ 331 की निम्नांकित पंक्तियाँ हरि भक्ति के उज्जवल रूप की अभिव्यंजिका है। हरि बिन कौन सहाई मन का कहे कबीर सुनहु रे संतहु इहु मन उड़न पखेरु बन का पद 218। हरि जस सुनहि न हरि गुण गावहि बातन ही असमान गिरावहि ऐसे लोगन सो क्या कहिए जो प्रभु की है भक्ति से बाहर से नते सदा डराने रहिए। पद 219। हरि भक्ति का संदेश वे हिंदू और मुसलमान दोनों को देते थे। यथा कंठे माला जिहवा रामा, सहस नाम लै लै करो सलाम, कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुरुक दो समझावो। पद 215 पृष्ठ 330। पृष्ठ 183 पद संख्या 278 में भी नारदी भक्ति का वर्णन है। भगति नारदी मगन शरीरा, यही विधि भव तरीका है कबीरा। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद ने भक्ति का यही उदार रूप अपने शिष्य तथा समग्र जनता के समक्ष रखा था। कबीर ने योग्य शिष्य की भांति इसका प्रभु प्रचार किया। वैष्णव भक्ति से प्रभावित होकर कबीर ने आरती भी लिखी है। एक आरती पृष्ठ 222 पर पद संख्या 403 में है और दूसरी आरती पृष्ठ 328 पर पद संख्या 210 में है। दोनों आरतियों में वह सामग्री विद्यमान है जिसे वैष्णव भक्त आरती के समय रखते हैं, जैसे पत्र, पुष्प, दीप, धूप, घंटा आदि। कबीर ने केवल उसके स्थूल रूप को सूक्ष्म मानसिक रूप प्रदान कर दिया है। कर्म विपाक का जो रूप वैष्णवों को मान्य है, वही कबीर को भी। वे इस विषय में सूफियों के इस्लामी सिद्धांत से सहमत नहीं है। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 65 पर आठवें दोहे में वे लिखते हैं, साई मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े तोले सब संसार। कर्मों का फल देने में न्याय की यह तुला इस्लाम मजहब में नहीं चलती। वहाँ तो कयामत का दिन आएगा, तब कहीं खुदा का दरबार लगेगा। हजरत मोहम्मद खुदा के सामने होंगे और जिस जिसने कलमा पढ़ा है उसे बहिष्त में भिजवाते जाएंगे। शेष व्यक्ति तो बेचारे दोजख की अग्नि में जलने के लिए खड़े ही हैं। कैसा निराधार, तर्कशून्य एवं अन्यायपूर्ण यह इस्लाम का कर्मफल का सिद्धांत है। कभी इसकी धर्म प्रवण आत्मा ऐसे सिद्धांतों में भला क्या निष्ठा रखती है। आर्य जाति का कर्म विपाक का सिद्धांत न्याय पर आधारित है। कबीर को वही मान्य था और वही सबको मान्य हो भी सकता है। तभी तो कबीर पृष्ठ 156 पद संख्या 200 में लिखते हैं, जो जस करी है सो तस पई है राजा राम न्यायी। वे कोरे कथन और श्रवण को भी उतना महत्व नहीं देते जितना कर्म को देते हैं। इसी के आगे 201 पद में वे लिखते हैं, कथा बजे सुने सब कोई, कथा न होई किए होई। पौराणिकता। वैष्णव भक्ति को जिस पौराणिकता ने उपासना और ध्यान के क्षेत्र से निकालकर पूजा और अर्चा का रूप प्रदान किया था, जिसने ईश्वर के अवतार, उनके नाम, रूप, गुण, क्रिया और धाम के चित्रण की प्रधानता थी, जो समय की आवश्यकता के अनुकूल सूक्ष्म को स्थूल द्वारा, निराकार को साकार द्वारा तथा अमूर्त को मूर्त द्वारा प्रकट करने में संलग्न थी, वह पौराणिकता भी कबीर की पदावली में खुलकर खेल रही है। वैष्णव भक्ति के पंचम युग की यही विशेषता है। कबीर ईश्वर के अवतारों में विश्वास नहीं रखते। वे निर्गुण राम के भजन, स्मरण और जाप की बात करते हैं। मूर्ति पूजा में उनकी आस्था नहीं है। ईश्वर के संबंध में उनकी स्थिर धारणा है कि उसने दशरथ के घर में जन्म नहीं लिया, न लंकाधिपति रावण को सताया, न उसने देवकी की कोख से अवतार लिया, न उसे यशोदा ने गोद में लेकर खिलाया। पृष्ठ 322 पद संख्या 186 भी दर्शनीय है। न उसने गोवर्धन उठाकर हाथ पर रखा, न वह ग्वालाओं के साथ इधर उधर घूमता फिरा, न उसने बामन बनकर बलि के साथ छल किया, न वह मत्स्य और कच्छप बना, न गंडक, शालग्राम और वाराह। क्षत्रिय संहर्ता, परशुराम तथा अन्य कहे जाने वाले अवतार उसके अवतार नहीं है। कबीर ग्रंथावली 12 पदी रमैणी पृष्ठ 242। कबीर के इस विश्वास के होते हुए भी उन पर पौराणिकता का सामान्य नहीं असाधारण प्रभाव है। इसका एक कारण तो उनका स्वामी रामानंद का शिष्य होना है, दूसरा कारण है भगवत भक्ति के प्रचार के लिए पौराणिक शैली का प्रभु विष्णु रूप। कथाओं तथा वार्ताओं द्वारा जो बात लोक मानस पर सुगमता से बैठ जाती है, वह दर्शन की गूढ़ गुत्थियों द्वारा संभव नहीं हो पाती। कबीर ने इसी हेतु पौराणिकों द्वारा प्रस्तुत की हुई हरि नामावली, भक्त कथाएं तथा अवतार लीलाएं ज्यों की त्यों ग्रहण कर ली हैं और उनका उद्देश्य ऐसा करने में जनता को भगवान की ओर उन्मुख करना ही जान पड़ता है। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 214 पद संख्या 389 में उन्होंने प्रहलाद तथा नरसिंह अवतार की संपूर्ण कथा इस प्रकार दी है, नहीं छाड़ो बाबा राम नाम, मोही और पढ़न सु कौन काम, प्रहलाद पधारे पढ़न साल, संग सखा लिए बहुत बाल, मोही कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पाटी में लिखी दय श्री गोपाल, तब सना सना सेना पहरेदार, कहो जाई प्रहलाद बंधायो बेगी आई, तू राम कहन की छाणी बानी, बेगी छुड़ाओ मेरो कहो मानी, मोही कहा डरावे बार बार, जिनी जलथल गिरी को कियो प्रहार, बांधी मारी भावे देह जारी, जेहू राम छाणो तो मेरे गुसाई गारी, तब काढ़ी खड्ग को प्यो रिसाई, तो ही राखन हारो मोही बताई, खभा में प्रगटियो गिलारी, हर ना कुछ मान्यो नख बिदारी। महापुरुष देवाधिदेव नरस्यक प्रगट कियो भगति देव, कहे कबीर कोई लहे न पार, प्रहलाद उवारियो अनेक बार। पृष्ठ 302 पर पद संख्या 129 में भी इस कथा की ओर इन शब्दों में निर्देश किया गया है। संत प्रहलाद की तैज जिस राखी, हरि नाखसु नख बिदर्यो। पुराणों में जो प्रहलाद की कथा वर्णित है वही इस पद में पद्यबद्ध कर दी गई है। इस कथा से सभी परिचित हैं, अतः इस पद का अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्वान ऐसे पद्यों को प्रक्षिप्त भी कह सकते हैं, पर अन्य स्थानों पर जो ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं आती हैं, उनके संबंध में वे क्या कहेंगे। केवल क्षेपक मान लेने से तो काम नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ ये कथाएं आती हैं और कबीर के सिद्धांतों से मेल भी खाती हैं। पृष्ठ 320 पर पद संख्या 179 में कबीर लिखते हैं, राम जपो जिय ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। ध्रुव और प्रहलाद ही नहीं, वे इसी पद के आगे पद संख्या 180 में वैष्णवों की भांति अजामिल, गज तथा गणिका जैसे पतित कर्म करने वालों को भी राम नाम लेकर भव सागर से पार हो जाने वाला लिखते हैं। यह पद परिशिष्ट के स्थल पर ही नहीं, पदावली के पद संख्या 320 में भी है। पौराणिक प्रभाव के लिए कबीर ग्रंथावली की निम्नांकित पंक्तियाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। ब्रह्मा का आसन खिसिया, सुनत काल की गाज, पृष्ठ 6 दोहा 15। कैसो कही कही कू किए, ना सोइए असरार, पृष्ठ 6 दोहा 16। काम मिलावे राम को, जे कोई जाने राखी, कबीर बिचारा क्या करे, जाकी सुखदेव बोले साखी, पृष्ठ 51 दोहा 11। नारद कहे व्यास यौ भाषे, सुखदेव पूछो जाई, पृष्ठ 101 पद 39। इंद्र लोक अचिरज भया, ब्रह्मा पढ़या विचार, कबीर चाल्या राम पै, कौतिक गहार अपार, पृष्ठ 79 दोहा 3। सुर 33 कौतिक आए, मुनियर सहस 88, पृष्ठ 87 पद 1। ब्रह्मा इक जिनी सृष्टि उपाय, नाम कुलाल धराया, पृष्ठ 179 पद 268। कह कबीर भजु सारिंग पानी, रामे उदक मेरी दिशा बुझानी, पृष्ठ 207 पद 7। वृंदावन मन हरण मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, पृष्ठ 270 पद 18। इंद लोक शिव लोक जैबो, ओछे तप कर बाहर एबो, पृष्ठ 270 पद 19। जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरम गंग तरंग रे, कहे कबीर हरि भगति बाछु, जगत गुरु गोविंद रे, पृष्ठ 218 पद 390। भजी नारदादि सुकादि बंदित चरण पंकज भामिनी, भजी भजी सी पूषक पिया मनोहर, देव देव सिरोवनी, पृष्ठ 218 पद 392। जाके सुख उद्धव अक्रूर हनुमंत जागे लय लंगूर, शंकर जागे चरण सेव, कली जागे नामा जय देव, पृष्ठ 216 पद 387। कनक सनंदन शिव सुखादि आपन कमलापति भय ब्रह्मादि, पृष्ठ 215 पेज पद 384। मन में मैला तीरथ न्यावे, तिनी वैकुंठ न जाना, पृष्ठ 204 पद 345। कितेक शिव शंकर गए उठी, राम समाधि अजहू नहीं छूटी, प्रलय काल कहू कितेक भाष, गए इंद्र से अगणित लाश। ब्रह्मा खोजी पन्यो गही नाल, कह कबीर वह राम निराल, पृष्ठ 99 पद 35। राजा अम्बरीश के कारणी, चक्र सुदर्शन जा रहे, दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगत की शरण उबारे, पृष्ठ 127 पद 122। भजन को प्रताप ऐसे, तीरे जल पाखान, अधम भील अजाति गणिका, चढ़े जात विमान, पृष्ठ 190 पद 301। कभी कभी कबीर वेद कतेब की बात करने लगते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे वेद की निंदा कर रहे हैं, कहीं कहीं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से वेद और पुराण को विष के समान लिख दिया है। जन जागे का ऐसे ही नार, विष से लगे वेद पुराण, पृष्ठ 206 पद 352। उनका ऐसा भी मत ज्ञात होता है कि जहाँ निराकार भगवान निवास करते हैं वहाँ वेद पुराण और स्मृति का पाठ नहीं पहुँचता, पाठ पुराण वेद नहीं सुमृत, तहाँ बसे निरकारा, पृष्ठ 204 पद 345। पर कभी कभी वे वेद और पुराण को साक्षी भी देने लगते हैं, वेद पुराण कहत जाकी साक्षी, पृष्ठ 184 पद 283। निगम जाकी ताकी बोले कहे संत सुजान 190 पद 301, जिससे सिद्ध होता है कि उद्देश्य वेद और पुराणों की निंदा करना नहीं है, वेद के पाठ मात्र को नहीं उसमें निहित भाव को ग्रहण कराने के अभिलाषी हैं। इस विषय पर उन्होंने नीचे उद्धृत पंक्तियां स्पष्ट प्रकाश डालती हैं। वेद कतेव कहव मत झूठे, झूठा जौन विचार है, पृष्ठ 323 पद 192। वेद पुराण सुमित गुण पढ़ी पढ़ी, पढ़ी गुनी मरम न पावा, पृष्ठ 178 पद 264। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा, वेद पढ़िया का यहू फल पांडे, सब घटी देखे रामा, पृष्ठ 101 पद 39। पढ़ी पढ़ी पंडित वेद पछाणे, भीतरी भूति बसत न जाने, पृष्ठ 102 पद 42। चारियों वेद पढ़ाई करी, हरि सुन लाया हेत, बाली कबीरा ले गया पंडित ढूंढे खेत, पृष्ठ 36 दोहा 9। जो व्यक्ति वेद तो पढ़ता है परंतु उस पर विचार नहीं करता, उसे शब्द बोध तो है परंतु उन शब्दों में निहित रहस्य का ज्ञान नहीं है। उसका वेद पढ़ना गधे के ऊपर रखे चंदन के बोझ के समान है। वेद पाठ का फल तो उसमें अंकित भावनाओं को हृदयंगम करने में है। समस्त ज्ञान अंत में उस ज्ञान के स्रोत को समझने के लिए है, पर जो उसे छोड़कर केवल शब्दों और छंदों से प्रेम करता है उसका वेद पाठ व्यर्थ है। ऐसे पाठ की सराहना कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। स्वयं वेद ने ऐसे पाठ को निरर्थक माना है। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, ऋग्वेद 1:164-39। लीला पौराणिकता का सबसे बड़ा प्रभाव हरि लीला में निहित है। यह लीला सृष्टि के सृजन पालन और संहार तीनों कार्यों में प्रकट होती है। भगवान को की यह लीला अपार है, दुर्बल मानव इसके समझने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता है। वेद और शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, पर उस अविगत की गति को अवगत कर लेना सहज कार्य नहीं है। पृष्ठ 104 पद 49 में कबीर लिखते हैं, निरंगुण राम निरंगुण राम जपहु रे भाई, अविगत को गति लखी न जाई। चारि वेद जाके सुमृत पुराना, नौ व्याकरणा मरम न जाना, शेष नाग जाके गरण समाना, चरण कमल कमला नहीं जाना। कबीर का राम निर्गुण होते हुए भी सगुण है। उसके पास पौराणिक पद्धति के अनुकूल शेष नाग है, गरुड़ है और लक्ष्मी कमला भी है। ये सब उसके समीप रहते हैं। कमला तो सदैव उसके चरण कमलों की सेवा करती रहती है, परंतु भगवान की गति को वह भी नहीं जान पाती। नीचे लिखे पद में प्रभु की महनीय महत्ता अभिव्यंजित हुई है। लोग कहें गोवर्धन धारी, ताको मोही अचंभो भारी, अष्टकुली पर्वत जाके पग की रहना, सातो सायर अंजन नैना, ए उपमा हरि कीति एक ओपै, अनेक मेर नख ऊपरी रोपै, धरणी आकाश अधर जिनी राखी, ताकि मुग्धा कहे न साखी, शिव बिरंची नारद जिस गावे, कह कबीर वाको पार न पावे, पृष्ठ 201 पद 333। अष्टकुल के पर्वत जिसके पैरों की धूली है, सातों समुद्र नेत्रांजन के तुल्य है, जो अपने नख के ऊपर सुमेरु जैसे अनेक पर्वतों को धारण किए हुए हैं, जिसने पृथ्वी और आकाश को निराधार खड़ा कर रखा है, उसको गोवर्धन धारी जैसी छोटी उपमा क्या शोभा देगी। शिव ब्रह्मा और नारद जिसका यशोगान निरंतर किया करते हैं फिर भी उसका पार नहीं पाते, उसकी महती लीला को मानव क्या समझेगा। तुलसी के हरि अनंत हरि कथा अनंता शब्द जैसी ही यह उक्ति है। पीछे हमने पौराणिक प्रभाव को प्रकट करने वाली जो कई पंक्तियां उद्धृत की हैं, उनमें पृष्ठ 99 के पद संख्या 35 को की पंक्तियां भी प्रभु की इस महत्ता को प्रकाशित करती हैं। पद के अनुसार न जाने कितने प्रलय काल निकल गए, कई लाख इंद्र स्वर्ग के अधिपति बन चुके, विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से जिस ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, वह ब्रह्मा कमल की ताल को पकड़कर उसके मूल तक पहुँचने का प्रयत्न ही करता रहा पर न पहुँच सका। राम की निराली लीला क्या कभी किसी की समझ में आ सकी है। प्रभु की लीला का प्रसार तीनों लोकों में है। जीवों के विविध योनियों से आवागमन करने का चक्र भी उसी की लीला का एक भाग है। तीन लोक में हमारा पसारा, आवागमन सब खेल हमारा, पृष्ठ 200 पद 332। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश नाम के पांच तत्वों से बना हुआ यह पिंड और ब्रह्मांड, फिर 84 लाख योनियों में विचित्र आकार धारण करने वाले तथा पृथक पृथक भावनाओं में मग्न एक समान जीवात्मा, पंच तत्व लय कीन बधान, 84 लख जीव समान, बेगर बेगर राखी लय भाव, पृष्ठ 143 एवं पद 167। ईश्वर की विचित्र लीला के विचित्र दिग्दर्शक हैं। पौराणिक वेद त्रयी में ब्रह्मा रजोगुणी, शंकर तमोगुणी और विष्णु सतोगुणी समझे जाते हैं। सृष्टि की रचना प्रक्रिया में रजोगुण की आवश्यकता पड़ती है, पालन में सतोगुण की और संहार का कार्य तमोगुण प्रधान है ही। ये तीनों क्रियाएं भगवान की लीला के भाग हैं। कबीर कहते हैं, रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर सतगुण हरि है सोई, कह कबीर एक राम जपहु रे हिंदू तुरक न कोई। पृष्ठ 106 पद 57। कबीर यह भी स्वीकार करते हैं कि ये तीनों देव एक ही देवादि देव राम के तीन रूप हैं, तीन मूर्तियां हैं। पाति ब्रह्मा पुहपे विष्णु फूल फल महादेव, तीनी देवों एक मूर्ति करे किसकी सेव। पृष्ठ 155 पद 198। विष्णु का पौराणिक रूप कितने निरावरण शब्दों में नीचे लिखी पंक्तियों में प्रकट हुआ है। जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा चरण गंग तरंग रे, पद 390 पृष्ठ 218। विष्णु की नाभि से पद्म उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा का उदय हुआ। गंगा की तरंग विष्णु के चरणों से निस्तृत हुई। पुराणों के अनुसार यह सब हरी लीला का प्रसाद है। राधा कृष्ण की लीला से संबद्ध नीचे लिखा पति इस संबंध में विचारणीय है। इही बनी बाजे मदन भेरी रे, उही बनी बाजे तूरा रे, इही बनी खेले राही रुकमनी, उही बनी कान अहीरा रे, आसी पासी तुलसी को बिरवा, माही द्वारिका गाँव रे, तहां मेरो ठाकुर राम राई है, भगत कबीरा नाऊ रे। पद 76 पृष्ठ 112। इस पद में बाजे भी बज रहे हैं, कृष्ण के प्यारे वन है, तुलसी का वृक्ष है, द्वारिका धाम है और अभी कृष्ण के साथ राही राधा तथा रुक्मिणी भी है। भक्त कबीर का राम इन सब में रमण कर रहा है। गुणवान और पंडित सब मिलकर इस राम की लीला यश का गान करते हैं। कहे कबीर गुणी अरु पंडित मिली लीला जस गावे, पृष्ठ 151 पद 186। कबीर का राम सबके ऊपर है। विश्व में बलवान से बलवान अतुल शक्ति का धनी एवं अभिमानी व्यक्ति भी अपने बल पर सदैव गर्व नहीं कर सकता। उसके गर्व को खर्व करने वाला, अच्युतों को अच्युत करने की शक्ति रखने वाला सत्व केतु प्रभु अपनी लीला द्वारा इस विषमी दृश्यमान जगत में अद्भुत सामंजस्य की सृष्टि करता रहता है। सहस्त्र बाहु के समान शक्तिशाली तथा दुर्योधन के समान योद्धा विश्व में कम ही उत्पन्न हुए हैं, पर ये भी उस महाबाहु की चपेट में पड़ने से नहीं बच सके। सहस्त्र बाहु के हरे प्राण जर जोधन घाल्यो खैभान, पद 340 पृष्ठ 230। दूसरी ओर अधम कुल में उत्पन्न होकर भी जो प्राणी प्रणत होकर भगवान के भजन में लीन हो गए, वे विमान पर चढ़कर स्वर्ग प्राप्ति के अधिकारी भी बने। अधम भील अजाति गणिका चढ़े जात विमान, पद 301 पृष्ठ 190। प्रभु की लीला वास्तव में विचित्र है। उन्हें दुर्योधन के दूध में विष परंतु विदुर के पानी में अमृत जान पड़ा। विदुर के घर का साग उन्होंने ऐसे मन से खाया जैसे खीर खा रहे हों, और ऐसा स्वादिष्ट जान पड़ा कि रात्रि पर्यंत उसी का गुणगान करते रहे, पृष्ठ 319 पद 176। अवतारी लीलाओं के अतिरिक्त कबीर ने निर्गुण निराकार प्रभु की सूक्ष्म लीलाओं पर भी प्रकाश डाला है। जैसे नर्तक नृत्यशाला को सजाता है और उसमें जो खेल होता है, उस खेल तथा नृत्यशाला को तो सब देखते हैं, पर पीछे नेपथ्य में बैठे हुए नट की ओर कोई नहीं देख पाता। उसी प्रकार प्रभु के द्वारा सजाए हुए इस दृश्यमान संसार को तो सब देख रहे हैं, पर वह नियामक प्रभु सबकी दृष्टि से ओझल है। जिन्हें नटवे नट सारी साजी, जो खेले सो दीसे बाजी, पृष्ठ 227। लीला करी करी भेष फिरावा, ओट बहुत कछु कहत न आवा, औ खेले सब ही घट माही, दूसर के लेख है कछु नाही, पृष्ठ 229। फिरत फिरत सब चरण तुराने, हरि चरित अगम कथे को जाने, गण गंधर्व मुनि अंत न पावा, रयो अलश जग धंधे लावा, लीला अगम कथे को पारा, बसहु समीप की रहो निनारा, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होई, पृष्ठ 230। नियर थे दूरी दूरी थे नियरा, रामचरित न जानिए जियरा, सीत थे अगनी परजरई, थल थे निधि निधि थे थल करई, ब्रज थे तीर्ण खिण भीतरी होई, तीर्ण थे कुलिस करे फुनि सोई, गिरवर छार छार गिर होई, अविगत गति जाने नहीं कोई, पृष्ठ 235। सबकी ओट में रहता हुआ भी वह नट नागर वेश परिवर्तित करके विविध प्रकार की लीलाएं दिखा रहा है। वह अंतर्यामी सबसे सबके अंतस्तल में विद्यमान है। यद्यपि अनेक नासिकों की दृष्टि में वह कुछ भी नहीं है, उसके चरित अगम्य है। घूम घाम कर कोई चाहे कितना विश्रांत हो ले, परिश्रांत हो ले, पर वह अलग दिखाई नहीं पड़ता। उसने सबको धंधे में लगा रखा है। वह समीप है या दूर कौन जानता है। मुनि तथा गंधर्वों के गण भी उसकी महिमा का अंत नहीं पा सकते। उसके संबंध में जो कुछ कहा जाता है वह वस्तुतः वैसा नहीं है, फिर भी उसका वर्णन करने और सुनने में आनंद उत्पन्न होता है और परमार्थ की सिद्धि होती है। राम का चरित्र निकट से दूर और दूर भी निकट है, वही शीतलता में अग्नि का प्रज्वालक है, वही स्थल में समुद्र और समुद्र में स्थल बनाने वाला है, वही वज्र को तिनके में तथा तिनके को वज्र में परिणत करता है और पर्वत को राख तथा राख को पर्वत बना देता है। उसकी लीला अनिर्वचनीय है। धाम, जब हम भगवान के धाम का नाम लेते हैं तब धाम से हमारा तात्पर्य किसी स्थान, भुवन या लोक विशेष से नहीं होता। प्रभु वस्तुतः किसी स्थान की सीमा में आबद्ध नहीं है, वे सर्वव्यापक हैं। जिन संप्रदायों में प्रभु के धाम का वर्णन लोक विशेष के रूप में किया गया है उसे औपचारिक रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उनके द्वारा वर्णित प्रभु का सर्वव्याप्त रूप एक खेल ही समझा जाएगा। भुवन या लोक पार्थिव है परन्तु धाम अप्राकृत दिव्य तथा चेतना की विकसित अवस्था का नाम है। यजुर्वेद 32:10 में धाम और भुवनों का पृथक पृथक निर्देश मिलता है। भुवन लोक तथा योनियां अनेक हैं, पर धाम सात हैं। मानव की सीमित शक्ति तृतीय धाम का तो अनुभव कर सकती है, पर उसके ऊपर के धामों का अनुभव दिव्य तेज से संपन्न कुछ विशिष्ट आत्माएं ही कर पाती हैं। चतुर्थ धाम का वर्णन उपनिषदों के कतिपय ऋषियों ने किया है, पुराण तथा बाइबिल में भी उपचार से उसका उल्लेख हुआ है और कबीर ने भी उसका नाम लिया है। वेद तृतीय धाम को स्वह, चतुर्थ को मह तथा उसके ऊपर के धामों को क्रमशः जनह, तपह तथा सत्यम नाम देता है। चेतना की ऊर्ध्व अवस्थाओं को वह नाक, स्वह, द्यौ, उत्तम ज्योति, परम व्योम, परम धाम, उत्तर धाम, अनंत्य, गुहा, अभय, स्वस्ति आदि कई नामों से पुकारता है। वैष्णवों ने इसे वैकुंठ, वृंदावन, गोलोक, साकेत आदि नाम दिए हैं। नाथपंथी और शैव इसे कैलाश तथा मानसरोवर कहते हैं। बौद्धों के यहाँ यह शून्य तथा निर्वाण की अवस्था है। कबीर पर इन सब का प्रभाव है। वे विभिन्न संप्रदायों के संपर्क में आए थे और इन नामों से परिचित थे। उनकी अपनी साधना भी उच्च कोटि की थी। अपनी अनुभूति को इन्होंने इन्हीं परिचित नामों द्वारा अभिव्यक्त किया है। वैदिक परम व्योम को वे गगन भी कहते हैं और अनंत को असीम या बेहद। बौद्धों का निर्वाण या शून्यवाद उन्हें सिद्धों तथा नाथों से मिला। बहिष्ट जिसका वे कभी कभी प्रयोग करते हैं इस्लाम की देन है। महल शब्द सूफियों से आकर संतों में प्रचलित हुआ होगा। वैसे चतुर्थ धाम मह से भी बन सकता है। मह, महर, महल। कबीर ग्रंथावली के आधार पर इन धामों का वर्णन नीचे दिया जाता है। बेहद शून्य तथा महल। हद छाणी बेहद गया, किया सुन्नी स्नान, मुनि जन महल न पावई, तहां किया विश्राम। पृष्ठ 13 दोहा 11। हदे छाड़ी बेहदी गया, हुआ निरंतर वास। पृष्ठ 12 दोहा 5। गगन, मन लागा उन मन नसु, गगन पहुंता जाई, देखा चंद बिहुणा चांदिणा, तहां अलख निरंजन राई। पृष्ठ 12 दोहा 15। अवधु गगन मंडल घर की जय। पृष्ठ 110। अमृत झरे सदा सुख उपजय, बंक नाली रस पीवे। पद 70। निर्वाण, कहे कबीर विचारी करी, वो है पद निर्वाण। पृष्ठ 243 पंक्ति 9। शून्य, सुनी मंडल में पुरुष एक, ताही रहे ल्यो लाई। पृष्ठ 67 दोहा 7। उल्टत पवन चक्र षट भेदे, सुरति सुन्न अनुरागी, सुन्न ही सुन्न मिल्या, समदर्शी पवन रूप होई जाव ही गे। पृष्ठ 271 रमैणी 24 26। उन्मन मनुवा सुन्नी समाना, दुविधा दुर्मति भागी। पृष्ठ 291 पद 91। तारे और तरह न आवे जाई, सहज सुन्नी मैं रहो समाई। पृष्ठ 199 पद 328। देहुरा तथा देवल, नीव बिहुणा देहुरा, देह बिहुणा देव, कबीर तहां विलंबिया, करे अलश की सेल। 41। देवल माह देहुरी, तिल जय है विस्तार, माह पाली माही जल, माह पूजन हार। 42 पृष्ठ 15। घट, कहे कबीर अब सोवाओ नाही, राम रतन पाया घट माही। पद 352 पृष्ठ 206। ज्यू नैनू मैं पूतली, त्यू खालिक घट माही। 82 9। अंतर, अंतरी कमल प्रकाशिया, ब्रह्म बास तहां होई। पृष्ठ 13 दोहा 7। अनहद बाजे नीझर झर, उपजे ब्रह्म ज्ञान, अविगत अंतरी प्रगटे, लागे प्रेम ध्यान। पृष्ठ 16 दोहा 44। द्वादश दल अभी अंतरी म्यंत, तहां प्रभु पायसी करी लय चंत। पद 328। हृदय कमल, अनहद सबद उठे झणकार, तहां प्रभु बैठे समरथ सार, कदली पुहुप दीप प्रकाश, हृदय पंकज में लिया निवास। विदा हृदय हृदय सरोवर रे मन बैठ की तय जिन जासी हृदय सरोवर है अविनाशी काया मधे कोटि तीरथ काया मधे काशी काया मधे कमलापति काया मधे वैकुंठ वासी उलटी पवन षड चक्र निवासी तीरथ राज गंग तटवासी 171-145। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, फिर बाहर तीर्थ आदि में भटकने और अपने प्रभु को वहाँ ढूंढने की क्या आवश्यकता है। काशी वैकुंठ प्रयाग गंगा मानसरोवर सब इसी शरीर के अंदर विद्यमान है। प्रभु का स्थान भी अपने ही हृदय रूपी मानसरोवर में है। यही अनहद नाथ का अनुपम संगीत है और पूजा की सामग्री के लिए पुष्प दीप आदि सब कुछ रखा हुआ है। शून्य शिखर गढ़ कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़ माही 2:8-13। गढ़ तथा ज्योतिर्मय धाम अगम अगोचर गमी नहीं कहाँ जगमगय ज्योति जहाँ कबीरा बंदगी कहाँ पाप पुण्य नहीं छोती 13:2-4। अगम निगम गढ़ रचिल अबास तहुआ ज्योति करे प्रकाश चमके बिजुरी तार अनंत तहाँ प्रभु बैठे कमला कंत 328। मान सरोवर ब्रह्मंडे स्यो प्यंडे जानी मान सरोवर करी स्नान सोह हंसा ताको जाप ताही न लिपे पुण्य न पाप 328। मान सरोवर सुभर जल हंसा के की कराही मुकता हल मुकता चुगे अब उड़ी अनस न जाही 15:39। चतुर्थ धाम कह कबीर हमारे गोविंद चौथे पद में जन का जंद 365-210। रजगुण तमगुण सतयुग कहिए यह तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चिन्हे तिन्ही परम पद पाया 28-272। परम पद साई माए शास पुनि साई साई या की नारी कह कबीर परम पद पाया संतो लेहु बिचारी 152-137। जपो न जाप हताओ नहीं गूगल पुस्तक ले न पढ़ाऊं कह कबीर परम पद पाया नहीं आऊं नहीं जाऊं 196-154। राम के नाम परम पद पाया छूटे विघन बिकारा 267-189। अभय पद छाण कपूर गांठ विष बांध्यो मूल हुआ न लाहा मेरे राम की अभय पद नगरी कह कबीर जुलाहा 134-131। कह कबीर निहचल भया निर्भय पद पाया संसा ता दिन का गया सतगुर समझाया 188-151। जह अनुभव तह मैं नहीं जह मैं तह हरि नाही 281-263। वैकुंठ चलन चलन सब कोई कहत है ना जानो वैकुंठ कहाँ है जो जन एक प्रमिति नहीं जाने वातन ही वैकुंठ बसाने जब लग है वैकुंठ की आशा तब लग नहीं हरिचरण निवासा कहे सुने कैसे पति आइये जब लग तहाँ आप नहीं जाइए कहे कबीर यहु कहिए काही साध संगति वैकुंठ ही आही 24-96। मन में मैला तीरथ न्यावे तिनी वैकुंठ न जाना 345-204। सो वैकुंठ कहो धू कैसा करी पसाव मोहि देहो 52-105। भरी साबड़ी मन वैकुंठा साई सूर हिया रंगा 161-214। विहिष्ट जन कभी देरी पनह समाना निस्त न जोक राखी रही माना 349-202। दोजक तो हम अंगिया यहु डर माही मुझ भिस्त न मेरे चाहिए बाज प्यारे तुझ 207-19। ऊपर वैकुंठ और बहिष्ठ के संबंध में कबीर की जो पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं, उनमें वैष्णव भक्ति का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। मानव जब तक वैकुंठ की आशा में लगा है तब तक भगवत भक्ति हरि चरणों में सतत निवास की अवस्था उससे कोसों दूर है। भक्त का आदर्श वैष्णव भक्ति के अनुसार वैकुंठ नहीं भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना है। यदि वैकुंठ में पहुंचकर भक्त हरि सेवा से भगवान के भजन से वंचित हो गया तो ऐसे वैकुंठ में जाने से क्या लाभ। सूरदास ने इसीलिए लिखा था वंशी वट वृंदावन यमुना तजी वैकुंठ को जावे सूरसागर 2:2। बिहिष्ट के संबंध में भी कबीर ने यही कहा है कि यदि बिहिष्ट मुझे अपने प्रिय इष्ट देव की सेवा से वंचित करती है जहाँ मेरा प्यारा ही नहीं है तो ऐसी बिहिष्ट मुझे नहीं चाहिए। इसकी अपेक्षा मैं प्रभु के साथ रहता हुआ दोजक को स्वीकार कर लूंगा उससे मुझे कुछ भी भय नहीं होगा। इससे यह भाव भी अभिव्यंजित होता है कि वैकुंठ आदि कोई स्थान विशेष नहीं है। जब प्रभु सर्वत्र रम रहे हैं तो सर्वत्र ही वैकुंठ है। आवश्यकता है उन्हें पहचानने और उनमें अपने व्यक्तित्व का परित्याग करके तल्लीन हो जाने की। जहाँ निराकार भगवान रहते हैं वहाँ कुछ है भी या नहीं, वहाँ की कैसी परिस्थिति है, इस प्रश्न को कबीर ने निम्नांकित पद में उठाया है। राम राई अविगत विगति न जान, कही किम तो ही रूप बशान। प्रथमे गगन की पुहमी प्रथमे प्रभु, प्रथमे पवन की पाणी। प्रथमे चंद की सूर प्रथमे प्रभु, प्रथमे कौन बिनाणी। प्रथमे प्राण की प्यंड प्रथमे प्रभु, प्रथमे रक्त की रेत। प्रथमे पुरुष की नारी प्रथमे प्रभु, प्रथमे विज की खेत। प्रथमे दिवस की रैणी प्रथमे प्रभु, प्रथमे राप पाप की पुण्य। कह कबीर जहाँ बसहु निरंजन, तहाँ कछु आही की शून्य। पद 164 पृष्ठ 143। इस प्रपंच में जो कारण और कार्य का संबंध दृष्टिगोचर हो रहा है वह इस प्रपंच से पूर्व किस रूप का था और वह था भी या नहीं, यही समस्या कबीर के सम्मुख है। सृष्टि रचना के क्रम में पृथ्वी से पहले आकाश है, पानी से पहले पवन है, चंद्र से प्रथम सूर्य है, पिंड से प्रथम प्राण है, रेत वीर से पूर्व रक्त है, पर पुरुष और स्त्री, बीज और खेत, दिन और रात्रि, पाप और पुण्य का युग्म है। जब इनमें से कुछ भी नहीं था और जब इनके बाद कुछ भी नहीं रहेगा तब कहते हैं कि एक निरंजन निराकार परम तत्व रह जाएगा। परंतु जहाँ एक निराकार तत्व होगा वहाँ की अवस्था कैसी होगी, विधि परक होगी या निषेधात्मक, वहाँ कुछ होगा भी या नहीं। स्वयं निराकार तत्व शून्य जैसी निषेधात्मक सत्ता है या वह कुछ है भी, बौद्धों के शून्यवाद ने भी कुछ ऐसे ही प्रश्न खड़े किए हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में भी ऐसे ही प्रश्न हैं। प्रारंभिक दशा में असत था या सत, रज था या व्योम, यदि कुछ था तो किसकी शरण में था, किसके आश्रय से था, क्या उस समय यह गंभीर जल था। अंत में उत्तर भी दिया गया है, उस परम व्योम का परम शून्य का जो अध्यक्ष है वही इसे जानता है। प्यारे प्रश्नकर्ता जी, और मैं कैसे कहूँ कि वह भी जानता ही है। वास्तव में जीव की स्वल्प बुद्धि शंकाएं तो खड़ी कर सकती है, पर पूर्ण उत्तर देना उसकी शक्ति के बाहर है। अतः वह परम व्योम, परम शून्यावस्था, परम धाम, निरंजन निवास क्या है, कैसा है, इसे समझ लेना संसारी जीव के वश की बात नहीं है। साधना के उपरांत जो साधक जितना देख आया है उसका उतना भी वर्णन वह नहीं कर सका। यह वैखरी वाणी उस परावाणी की बात संतोष पूर्वक कह भी कैसे सकती है। रूप, श्रुति भगवती कहती है, प्रजापते नत्व देतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। ऋग्वेद 10:121-10। उत्पन्न हुई सत्ताओं की रक्षा करने वाले परम प्रभु, ये समग्र उत्पन्न पदार्थ और जो इनके चारों ओर विद्यमान कोष रूप सामग्री है वह तुमसे व्यतिरिक्त नहीं, अन्य नहीं है। यही नहीं, तुम इन सबको अतिक्रांत करके भी विद्यमान हो। यह लोक और कोष तुमसे परिपूर्ण हो रहे हैं, तुम इन सब में व्याप्त हो। व्याप्त और व्यापक संबंध द्वारा मानो तुम यहाँ के प्रत्येक पदार्थ में सद्रूप हो रहे हो। एक अन्य मंत्र में कहा है, आत्मा जगतस्थुश्च, यजुर्वेद 13:46। प्रभु जगत और तस्थुश दोनों का आत्मा है, स्थावर और जंगम, चर और अचर, सबका आत्मा ईश्वर है। इस रूप में वह दिव्य जगत मानो ईश्वर का शरीर है, इसी हेतु ईश्वर को विश्व वपु भी कहा जाता है। इस प्रकार विश्व का एक एक रूप मानो ईश्वर का एक एक अंग है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, एक वाले मंत्रों में पृथ्वी को ईश्वर का पैर, अंतरिक्ष को उदर, द्यौ को शिर, सूर्य और चंद्र को नेत्र, अग्नि को मुख, धातु को प्राणापान, विद्युत रूप शक्ति को अंगरस और दिशाओं को उसका श्रोत्र कहा गया है। पुरुष सूक्त में भी इसी प्रकार की कल्पना पाई जाती है। उपनिषदों में भी प्रभु को रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव कहा गया है। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिनही को दोजख, जिन नाही न पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक ज्योति संसारा, एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही सृजन हारा। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काट है, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। 55 पृष्ठ 105। वेद ने कहा था प्रभु से अन्य कुछ नहीं है, कबीर कहते हैं यहाँ दो है ही नहीं, एक ही है, वह एक ही सर्व व्याप्त है। व्याप्य वस्तु रूप परिवर्तन करती है, काटी जाती है, उनके अवयव परमाणुओं में विभक्त होकर नवीन संगठन को जन्म देते हैं, पर व्यापक वस्तु काटी नहीं जा सकती क्योंकि वह परमाणु रूपा नहीं है। बढ़ई काठ को काट सकता है परंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं, और अग्नि जैसे उपले में व्याप्त होकर उपले का, काष्ठ में व्याप्त होकर काष्ठ का, अथवा लोहे में व्याप्त होकर लोहे का स्वरूप धारण कर लेती है, अपने व्याप्य के आकार की बन जाती है, उसी प्रकार वह परम तत्व घट घट में व्यापक होकर मानो अनेक स्वरूप धारण कर रहा है। यहाँ जितने दृश्य हैं उतने ही मानो प्रभु के शरीर हैं। वेद में विभिन्न शरीर न कहकर मानव शरीर के रूपक द्वारा उन्हें विभिन्न अंगों और इंद्रियों का रूप दे दिया है। यह तो रूपक की बात हुई जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध निहित है। इस संबंध से पृथक प्रभु का रूप क्या है? कबीर कहते हैं, व्याप्य वस्तु अंजन है, आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत रचना का विस्तार, उसके गुण और प्राणियों के बुद्धि से लेकर स्थूल शरीर तक समस्त अवयव अंजन के ही नाना रूप हैं। प्रभु इन सबसे पृथक है, निरंजन है। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन उत्पत्ति वो ओंकार, अंजन मांड्या सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद, अंजन गोपी संगी गोव्यंग, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन पाती अंजन देव, अंजन की कर अंजन सेव। 336। अंजन आवे अंजन जाई, निरंजन सब घटी रहो समाई। 337। पृष्ठ 201-202। अंजन या अंजना किसी वस्तु को चमकाने का साधन है, प्रभु साधन नहीं साध्य है। यह समग्र विश्व पार्थिवता से लेकर दिव्य सत्ताओं तक, वाणी से लेकर वेद तक, उसी साध्य रूप प्रभु की प्राप्ति के लिए साधन का काम देता है। इसका आविर्भाव और तिरुभाव होता है, परंतु प्रभु एक रस है। हम जिन देवताओं और अवतारी महापुरुषों की पूजा करते हैं, वह मानो अंजन की अंजन द्वारा पूजा है, साधन की ही साधन द्वारा सेवा है। प्रभु सेवियों का भी सेव्य है, वहाँ अंजन की गति नहीं है, वह सूक्ष्म स्थूल रूप सभी रूपों से पृथक अरूप है, निरंजन है। निम्नांकित पंक्तियों में भी इसी तथ्य को प्रकट किया गया है। राम के नाये निशान बागा, काका मरम न जाने कोई, भूष तृषा गुण वाकय नाही, घट घट अंतरि सोई। वेद विवर्जित भेद विवर्जित, विवर्जित पाप रूपुण्य, ज्ञान विवर्जित ध्यान विवर्जित, विवर्जित अस्थूल शून्य, भेष विवर्जित भीख विवर्जित, विवर्जित ड्यभंक रूप, विवर्जित ड्यंभक रूप, कहे कबीर तिहु लोक विवर्जित, ऐसा तत्त अनूप। 220। पृष्ठ 163। तो कछु विचारहु पंडित लोई, जाके रूप न रेखा वरण नहीं कोई। 37। पृष्ठ 100। अवरण एक अकल अविनाशी, घटी घटी आप रहे, तोल न मोल माप कछु नाही, गिनती ज्ञान न होई, ना सो भार ना सो हरुआ, ताकि पारिश लसे न कोई। 173। पृष्ठ 144। जाके मुह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, कुहूप वास है पतला, ऐसा तत्त अनूप। 2000। पृष्ठ 60। रूप स्वरूप न आवे बोला, हरु गरु कछु जाई न तोला। 12। पति रमैणी। पृष्ठ 240। वेद ने ईश्वर के वर्णन में अकायम, अवरणम, अस्नाविरम, अपाप विधम आदि कहकर जिस नेति नेति प्रणाली का अवलंबन लिया था, कभी भी उसी पद्धति पर प्रभु के रूप का निरूपण कर रहे हैं। भूख प्यास वेदना विभेद, पाप पुण्य, ज्ञान ध्यान स्थूलता शून्यता, वेश भिक्षा शैशव बुढ़ापा आदि सब कुछ त्रिलोकी से संबद्ध है। प्रभु इन सबसे भिन्न अनुपम तत्व है, वह रूप रेखा रंग आदि सबसे पृथक है। उसकी तोल मोल माप गिनती आदि कुछ भी नहीं हो सकती, न उसे भारी कहा जा सकता है न हल्का, उसके मुख माथा आदि कुछ भी नहीं है। वह पुरुष के सौरभ से भी पतला है, जब सौरभ की सूक्ष्मता ही ग्राह्य नहीं हो सकती तो उस अनुपम तत्व की सूक्ष्मता का तो कहना ही क्या है। इस संबंध में कबीर के शब्दों में ही यह कहना अधिक उपयुक्त होगा। भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहो तो झूठ, मैं का जानो राम को, नैनू कबहू न दीठ। 1। पृष्ठ 17। ईश्वर भारी है या हल्का, इस बात को जानने का सामर्थ्य यहाँ किसी में भी नहीं है। उसे हल्का कहना तो सरासर मिथ्या भाषण करना है, यदि उसे भारी कहा जाए तो भय का विषय है। जिसके गर्भ में भारी से भारी पदार्थ निहित है, वह कितना भारी है इसका अनुमान लगाना भी भयावह है। जिसे नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, उसके संबंध में इदम इत्थम कथन ही असंबद्ध है, असंभव है। वह अनंत कौन है? जब यही प्रश्न समाधान के लिए छटपटा रहा है, तो वह क्या है और कैसा है? इन प्रश्नों के बोझ को भी विचार बेचारा वह नहीं कर सकेगा। तो क्या वह समझ में नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। साधकों ने अपनी साधना द्वारा घोर तप के उपरांत ऋत की प्रथमजा के सहारे उसकी कुछ झलक तो देखी ही है। इस झलक में ही उसकी बाकी झांकी पाकर वे कृतकृत्य हो गए हैं। कबीर ने इस झलक का अपने शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है। कबीर देख्या एक अंग महिमा कही न जाई, तेज पुंज पारस भणी नैनू रहा समाई। 38 पृष्ठ 15। कबीर कहते हैं, मैंने प्रभु का संपूर्ण रूप तो नहीं देखा, पर उसके एक अंग और उसकी भी केवल एक झलक के दर्शन किए हैं। उसकी झलक का जो रूप मानस चक्षुओं के सम्मुख आया है, वह अपने में अनंत महिमामय है, अजस्र तेज का पुंज है। जैसे पारस के स्पर्श से सब कुछ दमदमाता हुआ स्वर्ण ही स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार उसके दर्शन मात्र से मेरे नेत्रों के आगे प्रकाश ही प्रकाश जाज्वल्यमान हो उठा। मेरे नेत्रों में वही तो समाया हुआ है। प्रभु के इस ज्योतिर्मय रूप का वर्णन कबीर ने कई स्थानों पर किया है। नीचे इस विषय पर प्रकाश डालने वाली कुछ पंक्तियाँ कबीर ग्रंथावली से उद्धृत की जाती हैं। कबीर तेज अनंत का मानव उगी सूरज सेणी, पति संगी जागी सुंदरी कौतिक दीठा तेणी। 1 पृष्ठ 12। कौतिक दीठा देह बिन रवि शशि बिना उजास। 2। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कू शोभा नहीं देख्या ही परवान। 3। जब यह ज्योति सामने आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक सूर्य नहीं अनेक सूर्यों की सेना ही सेना दिखाई दे रही है। यह ज्योति अद्भुत कौतुकमयी है। इसके सामने सूर्य और चंद्र का प्रकाश फीका पड़ जाता है। पर ब्रह्म के तेज का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वह कथन का नहीं दर्शन या साक्षात्कार का विषय है। जिस साधक ने अपने मन को इस तेज में प्रभु के इस ज्योतिर्मय रूप में स्थिर कर दिया, वह संसार सागर से पार हो गया। ज्योति माँ ही जे मन स्थिर करे, कहे कबीर सो प्राणी तिरे। 328 पृष्ठ 99। जिन भक्तों साधकों मुनियों और ऋषियों ने ज्योति के दर्शन किए हैं, उन सब ने प्रायः इसी प्रकार का कथन किया है। मुंडक उपनिषद का ऋषि कहता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्निः तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। 10। द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भास सदृशी सा स्याद भास तस्य महात्मनः। इस निष्फल अविभक्त विरजा शुभ्र ज्योति के दर्शन आत्मज्ञानी ही कर पाते हैं। जिसे आत्मज्ञान नहीं, जिसने अपने स्वरूप को नहीं समझा, वह इस परा ज्योति के दर्शन कैसे कर सकता है। नाम श्रुति भगवती वाणी को नित्य और विरूपा अर्थात विविध रूपा कहती है। वैखरी वाणी की यह विविधता अनेक नामों का सृजन करती है। जब विश्व ही विविध दृश्यात्मक है तो इन अनेक दृश्यों के अनेक नाम होने ही चाहिए। प्राणी भी नाना योनियों में विकास के विभिन्न स्तरों पर अपने मनोनुकूल कार्यों में संलग्न है। जो जिस स्तर पर है वह उसी के आधार पर अपने प्रभु को किसी नाम विशेष से पुकारता है। यह पुकार शाश्वत है, इससे आत्मा को बड़ा बल मिलता है। वेद कहता है, अभिमाती को दबाने के लिए उस शतक क्रतु अनंत पराक्रम यज्ञ स्वरूप परम पावन प्रभु के नामों का जाप करना चाहिए। ऋग्वेद 3:37-3। प्रभु के नाम एक नहीं अनेक हैं। किसी भी नाम से उसे भजो, यह भजन ही आत्मा को पाप पाशों से पृथक करके उसे पवित्रता की ओर ले जाएगा। वैदिक ऋषियों ने स्वयं प्रभु को अनेक नाम दिए हैं। इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, यम आदि विभिन्न नामों द्वारा उसी एक प्रभु का बोध होता है। इन सब नामों में ओम की प्रधानता है। ओम समस्त शब्द राशि का मूल स्रोत है, निखिल वांग्मय का आधार है, समग्र वाणी विलास की आदि लीला भूमि है। आचार्यों के शब्दों में यह परम प्रभु का प्रथम धाम, प्रथम नाम, प्रथम प्रकाश है। ऋषियों ने इसे प्रणव कहा है। वैसी प्रणव सतत अभिनव सदैव सद्य नाम का जाप करके क्षीण दोष एवं विगत कलमश बने थे। ऋषियों ने अनुभव किया, जहाँ विभूति है, श्री है, ऊर्जित अवस्था है, वहाँ मानो प्रभु की ही ज्योति जगमगा रही है। प्रभु के ये ज्योतिर्मय रूप सामान्य जन के निकट भी हैं। प्रभु के प्रथम धाम तक सब प्राणियों की पहुँच नहीं हो पाती। अतः उन्होंने इस अनुभूति के आधार पर परिस्थिति और पात्र विशेष की दशा को देखते हुए प्रभु के अनेक नामों की कल्पना की, जिसे ऋषि ओम नाम से स्मरण करते थे। उसे ही विविध देशों और विविध कालों में विविध प्राणियों के द्वारा जिन अरहत, तथागत, शंकर, राम, कृष्ण, गोविंद, खुदा, अल्लाह, गॉड, लॉर्ड आदि अनेक नामों द्वारा स्मरण किया गया। प्रभु के सब नाम पुल्लिंग ही हो ऐसी बात नहीं है। ओम में उमा छिप पड़ी है, शक्तिमान के साथ उसकी शक्ति सदैव संयुक्त रहती है। उमा से संयुक्त ओम ही तो सोम है, जिसकी पवित्र धाराएं पवित्र अंतःकरणों में सदैव बरसती रहती हैं। अतः साधक कभी प्रभु का नाम स्मरण करते हैं और कभी उसकी शक्ति के श्रवण में मग्न हो जाते हैं। जो शक्ति और शक्तिमान है वही प्रकृति और पुरुष है, उमा और शिव है, माया और ब्रह्म है, श्री और विष्णु है, लक्ष्मी और नारायण है, सीता और राम है, राधा और कृष्ण है। संतों, भक्तों, कवियों तथा आचार्यों ने इस तथ्य को समझने और समझाने में कहीं भी संदेह के लिए अवसर नहीं रहने दिया है। साहित्य में इसी हेतु कहीं दुर्गा की वंदना है, सरस्वती की उपासना है, राधा की आराधना है, सीता की स्तुति है और साथ ही राम नाम का जाप है, कृष्ण का कीर्तन है, शिव की अर्चना है। हिंदी के भक्ति काल के आते आते प्रभु के इन विविध नामों को प्रतिष्ठा हो चुकी थी। सारग्राही, तत्वदर्शी संत कबीर ने इन नामों को अपना लिया। वे अपने प्रभु को अपनी वाणी में इन्हीं विभिन्न नामों से पुकारते हैं। वे उसे माँ भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं और कभी कभी दोस्त भी कह देते हैं। राम उनका सबसे अधिक प्यारा नाम है, उन्हें अपने गुरु से इसी नाम की दीक्षा मिली थी। अल्लाह का नाम लेंगे तो उनके साथ भी वे राम का नाम जोड़ देंगे। राम का नाम उन्होंने बार बार लिया है, अन्य नाम भी उनकी वाणी में निसंकोच भाव से प्रयुक्त हुए हैं, जैसे केशव, कृष्ण, विष्णु इत्यादि। पर जितना अधिक राम नाम का प्रयोग है उतना अन्य किसी भी नाम का नहीं। एक हरि नाम अवश्य ऐसा है जिसका राम नाम के समान ही बाहुल्य से प्रयोग हुआ है और जो उन पर पड़े हुए वैष्णव भक्ति के प्रभाव की सूचना देता है। नाम की महत्ता यही है कि वह साधक को विशिष्ट भावापन्न बनाता हुआ उसे नामी की ओर ले चले। अतः नाम विशेष का महत्व भी साधना में स्वीकृत हुआ है। फिर भी नाम केवल नाम है और भाव की अपेक्षा गौण है। कबीर ने राम नाम को महत्व अवश्य दिया है, पर अन्य अनेक नामों द्वारा भी उन्होंने अपने प्रभु को स्मरण किया है। ऐसा करने में उनका ध्यान भाव पर रहा है, नामी पर केंद्रित हुआ है, नाम पर नहीं। नीचे हम उन नामों का उल्लेख करेंगे जो कबीर ग्रंथावली के विविध स्थलों पर पाए जाते हैं। ओम, ओम ओंकार आदि में जाना, लिखी और मेटे ताही न माना, ओ ओंकार लखे जो कोई, सोई लखी मेटना न होई, पृष्ठ 310 पद 152। ओंकार आदि है मूला, राजा परजा एक ही सूला, पृष्ठ 243 चौपदी रमणी, ओंकारे जग उपजे, विकारे जग जाई, पृष्ठ 126 पद 121। राम, बहुत दिनन की जोवती, बात तुम्हारी राम, पृष्ठ 8 दोहा 6। पपीहा ज्यों पिव पिव करूं, कबरे मिलहुगे राम, पृष्ठ 9 दोहा 24। या जोगिया की जुगती जु बुझे, राम रमय ताको त्रिभुवन सुझे, पृष्ठ 158 पद 205। राम नाम रंग लागो, पुरंग त होई, हरी रंग सौ रंग और न कोई, पृष्ठ 161 पद 215। है कोई राम नाम बतावे, बस गोचर मोहि लखावे, पृष्ठ 162 पद 218। विशेष रूप से दृष्टव्य पृष्ठ 8 दोहा 7 8 11 12 पृष्ठ 7 दोहा 3। विरह को अंग पृष्ठ 7 दोहा 25 26 28 30 31 पृष्ठ 9 दोहा 22 पद 1 3 115 से 132 तक 399 आदि। 2 कृष्ण, कृष्ण कृपाल कबीर कही, इम प्रतिपालन क्यों करे, 57 छंद 1। विष्णु सोई जाको विस्तार, सोई कृष्ण जिन कियो संसार, पृष्ठ 199 पद 327। विष्णु ध्यान स्नान करी रे, बाहरी अंग न धोई रे, पृष्ठ 218 पद 391। पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, पृष्ठ 12 दोहा 3। पार ब्रह्म देख्या हो तत बाड़ी फूली, पृष्ठ 160 पद 214। उल्टी चाल फिले पर ब्रह्म को, सो सतगुरु हमारा, पृष्ठ 145 पद 170। घटी बधी कहीं न देखिए, ब्रह्म रहा भरपूरी, पृष्ठ 81 5 दोहा 53। तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक के शीश, पृष्ठ 81 4 दोहा 52। साई और न कोई सुनी सके, कै साई कै चित, पृष्ठ 9 दोहा 20। साई अपने कारण है, रोई रोई रतनिया, पृष्ठ 9 दोहा 25। भगवान काम क्रोध तृष्णा तजय, ताही मिले भगवान, पृष्ठ 10 दोहा 30। मन मसीति मैं किनहु न जाना, पंच पीर मालिम भगवाना। पृष्ठ 175 पद 256। हरि कहो संतो क्यों पाए दुर्लभ हरि दीदार। पृष्ठ 7 दोहा 27। अह निसी हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। पृष्ठ 7 दोहा 28। द्रष्टव्य पृष्ठ 7 दोहा 29 30 32। पृष्ठ 8 दोहा 9। पृष्ठ 9 दोहा 29। पृष्ठ 10 दोहा 30 33। पृष्ठ 11 दोहा 41। पदावली पद संख्या 147 148 149 158 380 81 397 आदि। गोविंद गोविंद के गुण बहुत हैं, लिखे जो हृदय माही। पृष्ठ 79 दोहा 7। जिनी पै गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। पृष्ठ 7 दोहा 2। गोपाल प्रेम प्रीति गोपाल भजी, नर और कारण जाई रे। पृष्ठ 217 पद 390। आई तलब गोपाल राय की, मैणी मंदिर छाणी चलियो। पृष्ठ 170 पद 243। केशव कलंक उतारो केशवा, भानो भरम अंधेर। पृष्ठ 85 दोहा 4। कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। पृष्ठ 6 दोहा 16। कहे कबीर सुनी केशवा, तू सकल व्यापी, तुम समान दाता नहीं, हमसे नहीं पापी। पृष्ठ 148 पद 178। कमलाकंत चमके बिजुरी तार अनंत, तहां प्रभु बैठे कमलाकंत। पृष्ठ 199 पद 328। दान एक मांगो कमलाकंत, कबीर के दुख हरण अनंत। पृष्ठ 123 पद 110। कृष्ण मदन मोहन हरि टिकुटी भई कान्ह के कारणी, भ्रमि भ्रमि तीरथ कीन्हा हो, सो पद देहु मोहि मदन मनोहर, जिहि पदी हरि मैं चीन्हा हो। पृष्ठ 112 पद 77। बिठुला श्री रंग पनवारी, मन के मोहन बिठुला, यहु मन लागो तो ही रे, अष्ट कमल दल भीतरा, तहा श्री रंग केली कराई रे, षोडश कमल जब चेतिया, तब मिली गए श्री बनवारी रे। पृष्ठ 78 पृष्ठ 88 पद 4। दामोदर तुम कृपाल दयाल दामोदर, भगत बछल भव हारी। पृष्ठ 53 पद 191। गोकुल नायक बिठुला, नर हरि शारंगधर श्री रंग। गोकुल नायक बिठुला, मेरा मन लागो तो ही रे, इही पद नर हरि भेटिए, छाड़ी कपट अभिमान रे, रसना रसही बिचारिये, सारंग श्रीरंग धार रे। पृष्ठ 88 89 पद 5। शालिग्राम सेवे शालिग्राम को, मन की भ्रांति न जाई। पृष्ठ 44 दोहा 6। गोपीनाथ एक निष्प्रेमी निर्धार का, गाहक गोपीनाथ। पृष्ठ 47 दोहा 22। चतुर्भुज रे जनमन माधव स्यो लाइये, चतुराई न चतुर्भुज पाइये। पृष्ठ 280 पद 52। मुकुंद नारायण मन मुकुंद जिह्वा नारायण, परे न जमकी फांसी। पृष्ठ 264 पद 3। माधव माधव कब करिहो दाया, पृष्ठ 192 पद 308। माधव दारन दुख सहयो न जाई। पृष्ठ 214 पद 384। नारायण ताथे सेविये नारायणा, प्रभु मेरा दीन दयाल दया करना। पृष्ठ 172 पद 248। जगन्नाथ कहे कबीर मेरे संग न साथ, जल थल में राखे जगन्नाथ। पृष्ठ 203 पद 341। कहे कबीर जगन्नाथ भजहुरे, जन्म अकारत जाई। पृष्ठ 195 पद 315। विष्णु नारायण गोविंद मुकुंद, मेरी जिभ्या विष्णु नयन नारायण, हृदय जपो गोविंदा, जम द्वार जब लेखा मांगा, तब का केहिस मुकुंदा। पृष्ठ 173 पद 250। जब यम द्वार पर लेखा मांगा जाएगा, तब मुकुंद कहकर क्या कर लोगे, मेरी जिभा पर तो अभी से विष्णु, नेत्रों में नारायण और हृदय में गोविंद वास करते हैं। मुरारी कहत कबीर हमको दुख भारी, बिन दर्शन क्यों जीव ही मुरारी। पृष्ठ 185 पद 287। कहे कबीर नहीं बस मेरा, सुनिए देव मुरारी। पृष्ठ 179 पद 266। कबीर सता क्या करे, जागी न जपै मुरारी, पृष्ठ 5 पद 11। कहे कबीर भजी चरण मुरारी, पृष्ठ 127 पद 123। बनवारी राम नरहरि माधव मधुसूदन। राम ऐसी हो जानी जपौ नरहरि, माधव मधुसूदन बनवारी, पृष्ठ 212 पद 374। पंचानन श्री मुरारी, तू करी दर क्यों न गुहारी, तू बिन पंचाननी श्री मुरारी, पृष्ठ 15 385। शारंग पाणी, जब लग हीन पड़े नहीं बाणी, तब लग भज मन सारंग पाणी, पृष्ठ 305 पद 348। कहे कबीर संसा गया मिले सारंग पाणी, पृष्ठ 138 पद 154। कहे कबीर भज सारंग पानी, नहीं तर वह खेचा तानी, पृष्ठ 117 पद 91। पुरुष, कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, पद 1 पृष्ठ 87। पुरुषोत्तम, आनंद मूल सदा परसोत्तम, घट बिन से गगन न जाई लय, पृष्ठ 187 पद 293। बिन रे जानी परणव परसोत्तम, कही कबीर रंगी राता, पृष्ठ 138 पद 153। अपरम पार परसोत्तम, वा मूर्ति की बलिहारी, पृष्ठ 143 पद 165। निरंजन, एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुरक दहू नहीं नेरा, कहे कबीर भरम सब लागा, कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सुमन लागा, पृष्ठ 202 पद 338। जामे मरे न संकुटि आवे, नाव निरंजन जाको रे, पृष्ठ 103 पद 48। अल्लाह, अल्लाह एक नूर उपनाया, ताकि कैसी निंदा, पृष्ठ 104 पद 51। कबीर पंगुड़ा अलह राम का, हरे गुर पीर हमारा, पृष्ठ 176 पद 259। अल्लाह ल्यो लाए काहे न रहिए, अहनिसी केवल राम नाम कहिए, पृष्ठ 175 पद 256। रहीम, दिल ही खोजी दिले मिल, दिले दिल भीतरी, यहाँ राम रहीमाना, पृष्ठ 176 पद 259। थाहत थाह न पावई, तू पूरा रहीमान, पृष्ठ 17 दोहा 2। काबा फेरी काशी भया, राम भया रहीम, पृष्ठ 54 पद 10। लांबी को अंग, खुदा जोरी किया जुलम है, मागे न्याव खुदा, पृष्ठ 43 दोहा 9। जिनकी दिल स्यावती नहीं, तिन कहां कहा खुदाई, पृष्ठ 43 दोहा 11। मुसलमान कहे एक है खुदाई, कबीरा को स्वामी घटी घटी रहो समाई, पृष्ठ 200 पद 330। साहिब, संपत्ति माही समाया, सो साहिब नहीं कोई, सो साहिब नहीं होई, सकल मांड में रमी रया, साहिब कहिए सोई, पृष्ठ 60 दोहा 1। सिर साहिब को सौंपना, सोच न कीजे सूरी, पृष्ठ 69 दोहा 11। साहिब सु परचा नहीं, ए जाहिंगे किस ठौर, पृष्ठ 31 दोहा 4। दयाल, दर्शन भया दयाल का, सूल भई सुख सौड़ी, पृष्ठ 16 दोहा 48। करतार, जम राणा गढ़ भेलिसी, सुमिरी लय करतार, पृष्ठ 21 दोहा 7। करीम, करम करीमा लिखी रहा, अब कछु लिखा न जाई, पृष्ठ 58 दोहा 7। कबीर ग्रंथावली से ईश्वर के जो नाम ऊपर उद्धृत किए गए हैं, उनमें से अधिकांश नाम वही हैं जो भागवत भक्ति वालों को भी मान्य हैं। वैष्णव धर्म ने भारत भूमि में अपने लिए जो मान्य स्थान बना लिया था, उसी का यह प्रभाव है। मुसलमानों के केवल कुछ ही नाम और वे भी कुछ थोड़े से स्थानों पर ही आए हैं। जो विद्वान कबीर को किसी मुसलमान शेख या पीर का शिष्य मानते हैं, उन्हें इन नामों को देखकर अपना मत परिवर्तन करना पड़ेगा। कबीर की रचनाओं में हिंदुत्व भरा पड़ा है, इससे केवल एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि कबीर भले ही मुस्लिम दंपति नीमा और नीरू के पोषित पुत्र हों, वे औरस पुत्र किसी उच्च कोटि के संस्कार संपन्न हिंदू दंपति के ही थे, और किमंदंती उन्हें स्वामी रामानंद के द्वारा आशीर्वाद तथा वरदान प्राप्त विधवा ब्राह्मणी की संतान कहती है, वह बहुत कुछ तथ्य के निकट है। गुण, सगुण तथा निर्गुण सत्ताओं की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। हमारी सम्मति में प्रत्येक सत्ता सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। वह स्वीय गुणों के कारण सगुण तथा परकीय गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण कहलाती है। कबीर ने इसलिए लिखा है, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है, बाट छाड़ क्यों बही है। पृष्ठ 149 पद 180। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही सत्ता के कुछ गुण अपने होते हैं और कुछ गुण दूसरी सत्ताओं के संबंध से उस पर आरोपित किए जाते हैं। अपने गुणों को निरपेक्ष और दूसरों से संबंधित गुणों को सापेक्ष कहा जा सकता है। इन गुणों के संबंध में कबीर ग्रंथावली के निम्नांकित उद्धरण पर्याप्त होंगे। निरपेक्ष गुण, वो है तैसा वो ही जाने, ओही आही आही नहीं आने। 241-14। अविगत अपरम्पार ब्रह्म ज्ञान रूप सब ठाम। पृष्ठ 241 पंक्ति 1। आनंद मूल सदा परसोतम। पृष्ठ 187 पद 293। सुख सागर गुण रवै कबीर। पृष्ठ 271 पद 22। ते तौ आही आनंद स्वरूपा। पृष्ठ 225 पंक्ति 3। कब मरी हूँ कब देखी हूँ पूरन परमानंद। पृष्ठ 69 दोहा 13। इन पंक्तियों से सिद्ध होता है कि प्रभु है, वह ज्ञान रूप है और वह आनंद स्वरूप है। वैदिक भक्ति पर प्रकाश डालते हुए हमने इन्हीं गुणों को प्रभु के निरपेक्ष गुण कहा है। जब हम ईश्वर के गुणों की बात करते हैं तब हमारी यह भी निश्चित धारणा रहती है कि प्रभु में एक भी अवगुण नहीं है। कबीर के शब्दों में, कर्ता केरे बहुत गुण, अवगुण नहीं, अवगुण कोई नाही। पृष्ठ 85 का प्रथम दोहा नंबर 3। सापेक्ष गुण, जगत की दृष्टि से सृष्टि का रचयिता पालयिता और संहर्ता, भाणण घणण संवारण समृत ज्यों राखे त्यों रहिए। पृष्ठ 99 पद 34। कहे कबीर सुनहुरे लोई, भाणण घणण समारण सोई। पद 273 पृष्ठ 181। जगत की दृष्टि से ईश्वर सृष्टि का रचयिता पालक और संहारक है। इन तीन गुणों के आधार पर रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर सतगुण हरि है सोई। पद 57। वह ब्रह्मा विष्णु हरि और शंकर कहलाता है। हिंदू तुरक का कर्ता एक है, का गति लखी न जाई। पद 58। एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही सिरजन हारा। पद 55। माटी एक सकल संसारा, बहु विधि भांडे घड़े कुंभारा। पद 53। ईश्वर सृष्टि रूपी चित्र का चित्रकार और इस महल का बनाने वाला सिजारा राज या कारीगर है। अंबरी दिस केता तारा, कौन चतुर ऐसा चित्रन हारा। पद 141 पृष्ठ 133। कबीर मंदिर ढही पड़ा, सेंट भई दी भई सहवार। कोई चिजारा चिणी गया, मिलिया न दूजी बार। पृष्ठ 22 दोहा 17। वही प्रभु समस्त लोको योनियों और मानव शरीरों का निर्माता है। जीव की दृष्टि से कर्म फल प्रदाता, जो जस करी है सो तस पई है, राजा राम नियाई। जैसी कहे करे जो तैसी, तौ तिरत न लागे बारा। कहता कही गया सुनता सुनी गया, करणी कठिन अपारा। पद 200। पूरी करणी राम न पावे, साच टिके निज रूप दिखावे। पद 201। निसि अधियारी कारणे 84 लखचंद, अति आतुर उदय किया, तौ दृष्टि नहीं मंद। पृष्ठ 2 दोहा 18। नलनी सायर धर किया, दौ लागी बहुतेणी, जल ही माहे जली मोई, पूरब जन्म दिशेणी। पृष्ठ 34 दोहा 22। पृष्ठ 41 पर दोहा 21 और 22 में को आगिला अभाग तथा को पूरी बला पाप में भी पूर्व जन्म का वर्णन है। इनके अतिरिक्त पृष्ठ 13 दोहा 10 और 12 में कुछ पूर्वेला लेख और कछु पूरब जन्म का लेख में भी पूर्व जन्म का वर्णन है। साई मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, बिन दाणी बिन पाइड़े तौले सब संसार। पृष्ठ 62 दोहा 8। कहे कबीर सुनहुरे संतो, करी ल्यो जे कछु करना, लख 84 जोनी फिरोगे बिना राम की सरना। पद 244 पृष्ठ 171। जीव को कर्म करने का तो अधिकार है, पर कर्म फल प्राप्ति में वह ईश्वर के अधीन है। वह जो कुछ करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इस फल को भोगने के लिए ईश्वर ने विविध लोक और विविध योनियों की रचना की है। भारतीय परंपरा 84 लाख योनियों की कल्पना करती है, जिनका नाम कबीर ने ऊपर उद्धृत पंक्तियों में लिया है। कबीर इन्हें भांडे, भांड, पात्र, बर्तन या शरीर भी कहते हैं। ये शरीर जीव के कर्मों के फल हैं, जो उन्हें ईश्वर के न्याय विधान के अनुसार प्राप्त होते हैं। ईश्वर कर्म फल देने के संबंध में ऐसा समर्थ है कि वह सबका साक्षी बना हुआ सबके कर्मों को तौल कर फल देता है। जिसने माता घटे न रत्ती बढ़े वाली कहावत जो की त्यों चरितार्थ होती है। मासा घटे न तिल बढ़े जो कोटिक करे उपाय, पृष्ठ 58 2007। इस कार्य में उसका न्याय और दया दोनों सम्मिलित रहते हैं। जीव कर्म फल के भोग से बच नहीं सकता। प्राक्तन कर्मों का विपाक उसके साथ वहाँ भी लगा रहता है जहाँ वह अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। अन्य दार्शनिकों और कवियों की भांति कबीर का भी मत है कि यदि मनुष्य कथनी और करनी को एक कर ले तो कर्म जाल से मुक्त हो सकता है। वचन और कर्म भी सत होने चाहिए, असत नहीं। पूरी करनी अर्थात कुत्सित कर्म जीव को राम से पृथक करने वाले हैं। वैदिक ऋषि के शब्दों में असत से सत और तम से ज्योति की ओर प्रयाण ही जीव को मृत्यु अर्थात आवागमन के चक्र से निकालकर अमृत अवस्था की ओर ले जाता है। सर्वशक्तिमान साई सु सब होत है, बंदे थे कुछ नाही, राई थे पर्वत करे, पर्वत राई माही, पृष्ठ 62 2012। जिसही न कोई तिहसी तू, जिस तू तिस सब कोई, दरिगह तेरी साइया नाम हरु मन होई, पृष्ठ 61 2003। चिंता न करी अत्यंत रह, साई है समरथ, पशु पशेरु जीव जंत तिनकी किसा ग्रंथ, पृष्ठ 58 2009। सर्व व्यापक सो मन सो तन सो विषय, सो त्रिभुवन पति कहूं कस, कहे कबीर व्यंदहु नरा, जीव जल पुरिया सकल रस, पृष्ठ 56 2009। नाति स्वरूप वरण नहीं जाके, घटी घटी रहो समाई, पद 121। तुरक मसीती देहुरे, हिंदू दुहुठा राम खुदाई, जहां मसीती देहुरा नहीं तहां काकी ठकुराई, अरध उरध दसहु दिसी, जित तित पुरी रया राम राई, पृष्ठ 106 पद 58। त्रिभुवन नाथ मिलिए त्रिभुवन नाथ सु, निर्भय होई रहिए, पृष्ठ 212 पद 373। कहे कबीर संता करी दूरी, त्रिभुवन नाथ रहा भरपूरी, पृष्ठ 105 पद 53। जगदीश ज्योति बिना जगदीश की, जगत उलंघ्या जाई, पृष्ठ 77 2004। दयालु मोही आज्ञा दई दयाल, दया करी काहू कु समझाई, पृष्ठ 190 पद 318। भक्त वत्सल दयालु तुम कृपाल दयाल दमोदर, भगत वत्सल भौहारी, पृष्ठ 153 पद 191। अनादि अनंत सही मन समझी, समृत शरणागता, जाकी आदि अंति मधि कोई न पावे, पृष्ठ 155 पद 199। वाके आदि अरु अंत न होई, पृष्ठ 149 पद 180। अजर अमर अलख अजरा अमर कथे सब कोई, अलख न कथना जाई, पृष्ठ 149 पद 180। पिंड और ब्रह्मांड से भी परे, पिंड ब्रह्मांड छाणी जे कथिए, कहे कबीर हरि सोई, पृष्ठ 149 पद 180। अगोचर नैना बैन अगोचरी, श्रवना करनी सार, पृष्ठ 241। है कोई राम नाम बतावे, वस्त अगोचर मोही लखावे, पृष्ठ 162 पद 218। अभय संतो से अनभय पद गहिए, कला अतीत आदि निधि निर्मल, ताकू सदा विचारत रहिए, पृष्ठ 139 पद 157। चिन्हत चीत निरंजन लाया, कहू कबीर तो अनभय पाया, पृष्ठ 281 पद 58। राजा को हरि समान नहीं राजा, ए भूपति सब दिवस चारी के, झूठे करत दिवाजा, पृष्ठ 278 पद 47। काहे न मिलो राजा राम गुसाई, पृष्ठ 125 पद 117। ठाकुर दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगत की शरण उबारे, पृष्ठ 117 पद 122। भूख प्यास रहित भूष त्रिषा गुण वाके नाही, घट घट अंतरी सोई, पृष्ठ 162 पद 220। भूषण तृषा धूप नहीं छाही, सुख दुख रहित रहे सब माही, पृष्ठ 240 12 पदी रमणी। सुख दुख रहित। कबीर साथी सो किया, जाके सुख दुख नहीं कोई, खिली मिली वह करी खेली स्यू, कदे बिछोह न होई। 86-1 अभिहर क अंग, अभंग अखंड एक रस, आदि मधि अरु अंत लो, अभिहर सदा अभंग, कबीर उस कर्ता की सेवग तजय न संग। 86-3 अभिहर क अंग, अविनाशी, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुम बिनसी रहेगा सोई। 103 कहे कबीर सबै जग बिनस्या, रहे राम अविनाशी रे। 366 ऊपर प्रभु के जिन गुणों का वर्णन किया गया है वे हम जीवों की अपेक्षा से हैं। प्रभु राजा है, ठाकुर है, तो हम सब उनकी प्रजा हैं, सेवक हैं। हम जन्म मरण के आविर्भाव तिरुभाव के चक्र में पड़ते हैं, वह जन्म और मृत्यु दोनों से विहीन है। हमें भय लगता है, वह निर्भय है। हम भक्त हैं, वह भक्त वत्सल है। हम शरीर धारण करते हैं, वह अशरीरी है। हमें भूख प्यास लगती है, वह इनसे रहित है। हम व्याप्य हैं, वह व्यापक है। हम अल्प शक्ति वाले हैं, वह सर्वशक्तिमान है। जहाँ तक पिंड और ब्रह्मांड का संबंध है, वह इन सब में ओत प्रोत है, पर वह इतना ही नहीं है। ये विशाल हैं, पर इयत्ता वाले हैं। वह इयत्ता या सीमा के बंधनों से परे है। अतः पिंड और ब्रह्मांड भी जहाँ नहीं है, वह वहाँ पर भी है। वह देश और काल दोनों को अतिक्रांत करके विद्यमान है। यहाँ की अवस्था सुख दुख मिश्रित है। वह सुख और दुख दोनों से रहित है। हमें माता पिता उत्पन्न करते हैं और हमारे भी संतान होती है। ईश्वर की न कोई माँ है, न कोई संतति और न कोई पिता। न उसे किसी ने उत्पन्न किया है और न वह किसी को उत्पन्न करता है। माए न बाप आव नहीं जावा, न बहु जर्ण्या न को वही जावा। पृष्ठ 241 पंक्ति 13। इस प्रकार के सभी संबंधों से वह शून्य है। नेत्र, वाणी, श्रवण आदि सभी इंद्रियों के विषयों से वह पृथक है। जब उसका कोई ग्राम, खेड़ा या स्थान ही नहीं, रूप, रेखा या वर्ण ही नहीं, तो उसके गुणों का वर्णन हो ही कैसे सकता है। वह हमारी भांति बालक, युवा या वृद्ध भी नहीं बनता। जाकर गांव न ठाव न खेरा, कैसे गुण वर्णू मैं तेरा। नहीं तहां रूप रेख गुण बाना, नहीं सो जान न विरध न बारा। पृष्ठ 242 पंक्ति 5-6-7। यों वह सतत बालक है, सतत तरुण है, सतत वृद्ध है। उसके समान कोई निष्पाप नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं और कोई प्राचीन भी नहीं है। अद्वैत प्रभु है, वह ज्ञानी है और आनंदी है। प्रभु के ये तीन अपने स्वाभाविक गुण हैं। द्वैतवादी इनमें भी व्यतिरेक करते हैं। उनके मतानुसार है अर्थात सत्ता या अस्तित्व का गुण ईश्वर के साथ जीव और प्रकृति का भी है। इसी प्रकार ज्ञानी गुण जीव और ईश्वर दोनों में पाया जाता है। केवल आनंदी गुण ऐसा है जिसे हम ईश्वर का मौलिक गुण कह सकते हैं और जो जीव या प्रकृति किसी में भी नहीं पाया जाता। अद्वैतवादी ऐसी धारणा नहीं रखते। उनका मत है कि ये तीनों ही गुण ईश्वर के अपने और मौलिक हैं। उस परम तत्व को वे ईश्वर भी नहीं ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त उनके मत में जीव या प्रकृति किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कबीर भी स्थान स्थान पर इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। जैसे पानी हिम का सघन रूप धारण करता है और हिम पिघल कर पुनः पानी बन जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत और जीव रूप में भासित होता है। प्रलयावस्था में जगत और जीव पुनः ब्रह्ममय हो जाते हैं। जैसे जल से तरंग और तरंग से जल पृथक नहीं है, अग्नि से चिंगारी और चिंगारी से अग्नि कोई अपर वस्तु नहीं है, कनक और कुंडल दोनों एक ही तत्व के दो अलग अलग नाम मात्र हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है। व्यवहार में ये दो भिन्न भिन्न सत्ताओं के नाम जान पड़ते हैं, वस्तुतः तत्व एक ही है। भक्ति पक्ष में कबीर ने अद्वैत भावना के साधन और सिद्धि दो रूप स्वीकार किए हैं। इनका विवेचन आगे किया जाएगा। ईश्वर अद्वैत है, इसके प्रतिपादन में कबीर ने बिंब प्रतिबिंब भाव, जल तरंग न्याय, कनक कुंडल न्याय आदि का सहारा लिया है। उनका मत है कि जगत और जीव के रूप में मानो ब्रह्म ही क्रीड़ा कर रहा है, खेल खेल रहा है। इनमें आप सब हिन में आप सू खेल है। पृष्ठ 151 पद 186। न कोई यहाँ मरता है, न पैदा होता है, न स्वर्ग है न नरक, यह सब उस प्रभु का खेल है। जैसे घड़े के अंदर और बाहर जल है, घड़े के फूटते ही जल जल में समा जाता है, वैसे ही क्रीड़ा रूप कर्म जाल के समाप्त होते ही एक तत्व अवशिष्ट रह जाता है। मैं तै तै मैं ए द्वै नाही, आपे अकल सकल घट माही। पृष्ठ 157 पद 203। यह परम तत्व न कहीं आता है न कहीं जाता है, वह तो सर्वत्र रमा हुआ है। वही तो मैं हूँ, फिर कैसा आवागमन और जन्म मरण, कैसा इस्लाम और हिंदूपन, कहाँ का वैकुंठ और बहिष्ट, कैसा पुरुषत्व और नारित्व, कैसा गुरुत्व और शिष्यत्व, कैसा मंत्र और मंत्रदाता, कैसा पूज्य और पुजारी, कैसा वादक और गायक, कैसी जात और पूजा की सामग्री, ये सब भेद तभी तक भाषित होते हैं जब तक अद्वैत स्थिति तक पहुंच नहीं होती। नाद बिंद रंक इक खेला, आपे गुरु आप ही चेला, आपे मंत्र आप मंत्रेता, आपे पूजे आप पूजेता, आपे गावे आप बजावे, अपना किया आप ही पावे, आपे धूप दीप आरती, अपनी आप लगावे जाती। पृष्ठ 243 12 पदी रमैणी का अंत। आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जाऊंगा, गुरु के शब्द में रमी रमी रहूंगा। आप कटोरा आपे थारी, आपे पुरिखा आपे नारी, आप सदाफल आपे नींबू, आपे मुसलमान आपे हिंदू। पृष्ठ 200 पद 331। भक्ति। कबीर प्रमुख रूप से भक्त हैं। भक्ति भक्त भगवंत और इन तीनों की ओर ले जाने वाले गुरु का उन्होंने मुक्त कंठ से यशोगान किया है। कबीर ग्रंथावली के पृष्ठ 1, 2 और 3 पर गुरु के महत्व का दैन्य गलित किंतु अतीव ओजस्विनी वाणी में प्रतिपादन किया गया है। कबीर को सदगुरु से बढ़कर अपना कोई सगा संबंधी दिखाई नहीं देता। सदगुरु अपने शिष्य को मनुष्य से देवता बना देता है। वह हृदय की आँख खोलकर शिष्य को उस अनंत जग कंत के दर्शन कराता है जिससे बढ़कर इस संसार में अन्य कुछ भी दर्शनीय नहीं है। गुरु के इस अनंत उपकार का बदला शिष्य भला क्या चुका सकेगा। इसी हेतु कबीर को गोविंद और गोविंद को बता देने वाले गुरु में कोई अंतर नहीं समझ जान पड़ता। सदगुरु की प्राप्ति को वे भगवत कृपा का ही प्रसाद समझते हैं। अंधकार में भटकते हुए शिष्य के हाथ में गुरु ज्ञान और भक्ति का दीपक देकर मार्ग प्रदर्शन करते हैं। कबीर ज्ञान के महत्व को भी स्वीकार करते हैं, पर भक्ति जैसे उनके जीवन का प्राण है। मन वचन और कर्म से भगवान के सतत स्मरण और भजन में ही उन्हें सुख मिलता है। अन्य समस्त कार्य उन्हें जंजाल तथा दुख रूप प्रतीत होते हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा क्रमना, कबीर सुमिरण सार। पृष्ठ 5, 2, 4। भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है, अतः समस्त संशयों का परित्याग करके मानव को भगवान के राम नाम का गुणगान करते हुए उनके चरण कमलों में अपनी चित्त वृत्तियों को केंद्रित कर देना चाहिए। चरण कमल चित लाइए, राम नाम गुण गाई, कहे कबीर संसा नहीं, भगति मुक्ति गति पाई दे। पृष्ठ 79 पद 5। भक्ति पथ में भी कबीर को अनेक पाखंडी दिखाई दिए, नाना प्रकार से नाना भावों का प्रदर्शन करने वाले। बहुत भगति भव सागरा, नाना विधि नाना भाव, जी हृदय श्री हरि भेटिया, सो भेद कहूं कहूं ठाव। पृष्ठ 97 पद 28। स्वल्प भक्ति पर पूर्ण भक्त होने का दंभ रखने वाले। थोड़ी भगति बहुत अहंकारा, ऐसा भगता मिले अपारा। पृष्ठ 204 पद 343। और ऊंचा मुख करके कीर्तन करने का ढोंग, करता दिखे कीर्तन ऊंचा करी करी तुंड, जाने बुझे कुछ नहीं जो ही आधा रुंड। पृष्ठ 38, 2, 5। भरने वाले व्यक्ति कबीर की दृष्टि में कभी ऊंचे नहीं उठे। उन्होंने सदैव ऐसे व्यक्तियों का तिरस्कार किया जिसका हृदय भगवत भक्ति में नहीं लगा। वह क्या बाया डंबरों का प्रदर्शन करके भक्त बन सकता है। भक्ति पथ पर चलते हुए साधक यदि किसी प्रकार की कामना अपने अंदर रखता है तो उसकी भक्ति कबीर की दृष्टि में निष्फल है। निष्काम परम देव सकाम भक्ति से कभी प्राप्त नहीं हो सकते। कामना जब लग भगति सकामता, तब लगी निर्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले नेह कामी निज देव। पृष्ठ 19, 2, 10। एक प्रकार का मद है, ऐसे मद से मत मन रूपी मातंग भक्ति के द्वार में कैसे प्रवेश कर सकता है जो राई के दशम भाग से भी अधिक फकरा है। भगति दुबारा संकड़ा, राई दसवे भई, मन तो मैंगल होए रहो क्यों करी सके समाई। पृष्ठ 30, 2, 26। भक्ति पथ पर चलना कायर का नहीं वीर का काम है, जो शिर को हथेली पर रखकर हरि नाम में अनुरक्त होता है। भक्ति अग्नि की ज्वाला के समान दुखद है, जो इस ज्वाला में कूद पड़ते हैं वे बच जाते हैं, पर बाहर खड़े तमाशा देखने वाले जल जाते हैं। पृष्ठ 70 दोहा 24-26। इस विश्व में यदि कोई सारभूत तत्व है तो वह ईश्वर ही है। अतः समस्त कर्मों में यदि कोई श्रेष्ठ कर्म है तो वह ईश्वर का भजन ही है। ईश्वर भजन में कबीर के सामने ध्रुव और प्रहलाद का आदर्श रहता है। पृष्ठ 320 पद 179। भगवत भक्ति रूपी राम रस के आगे उन्हें अन्य समस्त रस नीरस प्रतीत होते हैं। राम रस पिया पाहिया रे, चिह रस तात है बिसरी गए रस और। पृष्ठ 321 पद 183 तथा पृष्ठ 111 पद 75। भक्ति है तो जीवन सार्थक है, अन्यथा ऐसे जीवन से तो मरण ही अधिक श्रेयस्कर है। एक सच्चे वैष्णव भक्त के समान कबीर नारदी भक्ति में विश्वास रखते हैं। पृष्ठ 324 पद 194 तथा पृष्ठ 183 पद 278। अपने भक्ति सूत्रों में नारद तीर्थ व्रत तप योग आदि सबसे भक्ति को ऊर्ध्व स्थान देते हैं। कबीर की निम्नांकित पंक्तियाँ भी उन्हीं का अनुसरण कर रही हैं। जप तप दिशा थोथरा तीरथ व्रत बेसास सुवै सैम्बल सेविया यौ जग चल्या निरास। पृष्ठ 44 दोहा 8। तीरथ करी करी जग मुआ डूंघे पानी नाई राम ही राम जपन तड़ा काल घसीटिया जाई। पृष्ठ 37 दोहा 18। राम बिना संसार धंध कुहेरा सिरी प्रगटिया जम का पेरा देव पूजी पूजी हिंदू मुए तुरख मुए हजनाई हज जाई। जटा बांधी बांधी योगी मुए इनमें किनहु न पाई कवि कवि न कविता मुए कापड़ी केदारों जाई केस लुंची लुंची मुए बरतिया इनमें किनहु न पाई। पृष्ठ 195 पद 317। चिंता मणि प्रभु निकटी छाणी करी भ्रमी भ्रमी मति बुधि खाई तीरथ बरत जपै तप करी करी बहुत भांति हरि सोध है सकति सुहाग कह क्यों पावे अच्छता कंत विरोधे। पृष्ठ 195 पद 316। कबीर को जब तक थोथे लगते हैं वे तीर्थ यात्रा और व्रत में विश्वास रखना वैसा ही निरर्थक समझते हैं जैसे तोते द्वारा शालमली के फल की सेवा व्यर्थ होती है। तीर्थों के गंदे जल में स्नान करना और ऊपर से राम राम जपते जाना, देव प्रतिमाओं की पूजा करना, हज के लिए काबा जाना, जटा बांधना, कविता करना, केदारनाथ की यात्रा करना, जैनी साधुओं की भांति केशों को नोच नोच कर मुंडित बनना और व्रती कहलाना आदि सब निस्तार हैं, यदि हृदय में प्रभु के लिए सच्चा अनुराग नहीं है। जब प्रभु निकट से निकट हमारे अंदर ही विद्यमान है तो बाहर यात्रा करके उन्हें ढूंढने से क्या लाभ। पास रखी हुई चिंतामणि को छोड़कर बाहर उसकी प्राप्ति के लिए भटकना अपनी बुद्धि को ही नष्ट करना है। कबीर अपने पक्ष की स्थापना में सबसे बड़ी युक्ति यह देते हैं कि घर छोड़कर यदि कोई व्यक्ति वनवास करता है अथवा शरीर में भस्म का लेप लगाकर और जटाएं बढ़ाकर किसी गुफा का आश्रय लेता है पर मन पर विजय प्राप्त नहीं करता तो क्या भस्म का मलना जटाएं बढ़ा लेना या वनवास करना उसके आध्यात्मिक विकास का साधक होगा। पृष्ठ 190 पद 300। विकास तो मन को निर्मल बनाने में है। जब मन ही विकारों में ग्रसित है तो विकास कैसा, उत्थान कैसा। कबीर ने कहीं कहीं इसी आधार को लेकर ज्ञान कांड तथा कर्मकांड की बाह्योन्मुखता की भी निंदा की है। उनकी दृष्टि में वेद पुराण और स्मृतियों का ज्ञान प्राप्त करके भी यदि उनमें अंतर्हित रहस्य से मानो अनभिज्ञ रहा संध्या यदि कोई कर्म कांडी भगवत भक्त न बन सका तो ऐसा ज्ञान कांड और कर्म कांड व्यर्थ है, वह कोरा दिखावा मात्र है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी और ध्यानी यमराज के दरबार में अपने कपट पूर्ण व्यवहार के कारण ठोकरे खाने के ही पात्र बन सकेंगे। पृष्ठ 178 पद 264। जिन तीर्थों की यात्रा करने के लिए साधक बाहर की ओर दौड़ लगाता है और जिस अविनाशी तत्व की प्राप्ति के लिए उसे इतने कृच्छ जप तप त्याग रूपी बाह्य विधान संपादित करने पड़ते हैं वे तीर्थ और वह अविनश्वर सत्ता यदि शरीर के अंदर ही उसे उपलब्ध हो जाते हैं तो मन को बाहर भटकाने की क्या आवश्यकता है। पृष्ठ 145 पद 171। अतः कबीर की सम्मति में भक्ति भावना आंतरिक वस्तु है, वह बाह्य विधि विधान के पालन में नहीं है। कबीर का निश्चित मत है, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी दसवां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछाणी। पृष्ठ 44 दोहा 10। कबीर ने ज्ञान को साधन के रूप में महत्व तो दिया है पर उसे भक्ति से निम्न स्तर पर रखा है। वे भगवत कृपा को सर्वोपरि स्थान देते हैं। जिस पर प्रभु की कृपा नहीं हुई वह चाहे जैसा जपी तपी संयमी ध्यानी और ज्ञानी हो भव सागर से पार नहीं हो सकेगा। उनकी सम्मति में ब्रह्मा विष्णु और सुर मयंक इंद्र तक भगवत कृपा से वंचित हो कलंकित हुए तथा बंधन में पड़े। ब्रह्मा विष्णु अरु सुर मयंक किही नहीं लावा कलंक जप तप संयम सुचि ध्यान बंदी परे सब सहित ज्ञान कही कबीर उबरे द्वै तीनी जा परे गोविंद कृपा कीनी। पृष्ठ 216 पद 385। इसी अनुभूति को हृदय में धारण करके कबीर कहते हैं कि एक निरंजन में मन को लगाकर मैंने समस्त संदेहों को समाप्त कर दिया है। मैं न व्रत रखता हूँ, न मुहर्रम को जानता हूँ, न पूजा करता हूँ, न नमाज पढ़ता हूँ, न हज करने जाता हूँ और न तीर्थ यात्रा ही करता हूँ। ये सब केवल मध्य में दिखाई देते हैं। वे न अपने जन्म से पूर्व थे, न उसके पश्चात रहेंगे। जो इन सब के पूर्व भी था और पश्चात भी रहेगा, मैं तो उसी का स्मरण करता हूँ। जब उसको पहचान लिया तो किसी दूसरे से क्या मतलब। पृष्ठ 202 पद 338। भक्ति के दो मार्ग। कबीर की आत्मा प्रभु दर्शन के लिए कितनी व्याकुल रही है इसका किंचित अनुमान नीचे लिखे पद से लग सकेगा। अजहू बीच कैसे दर्शन तोरा, बिन दर्शन मन माने क्यों मोरा, हम ही कुसेवग क्या तुम ही अजाना, दुह मैं दोष कहो की रामा, तुम कहियत त्रिभुवन पति राजा, मन वांछित सब पुरवन काजा, कहे कबीर हरि दरस दिखावो, हम ही बुलावो कह तुम चली आवो। पृष्ठ 207 पद 358। यह पद कबीर की सिद्धावस्था का नहीं है, यह पद उनकी उस प्रारंभिक साधक अवस्था का है जब वे अपने और प्रभु के बीच में अंतर का अनुभव करते थे, पर उनकी आत्मा हरि दर्शन की प्यासी थी। भगवान का साक्षात किए बिना उन्हें चैन कहाँ। अतः कभी तो उनकी दृष्टि अपनी कुसेवा रूप न्यूनता पर जाती है और कभी कभी उन्हें ऐसा भी भासित होने लगता है जैसे भगवान ही जानबूझकर अजान बने हों। दोनों दशाओं में कहीं पर तो दोष स्थिर करना ही होगा। फिर वे अनुभव करने लगते हैं कि भगवान तो तीनों भुवनों के स्वामी हैं। वे भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करने वाले हैं, अतः दोष मेरा ही है। अपनी निर्बलता की अनुभूति उन्हें पुनः हरि चरणों में डाल देती है और वे प्रभु से दर्शन देने की याचना करने लगते हैं। पर ये दर्शन तो दो ही प्रकार से हो सकते हैं, या तो भक्त प्रभु के पास पहुँचे या प्रभु चलकर भक्त के समीप आए। यद अग्नि श्यामहम त्वम त्वम वाद्य स्या अहम त्युष्टे सत्या इहाशिषः। ऋग्वेद 8:44-23। भक्त निर्बल है, अंदेसड़ा न भाजिसी संदेशो कहिया, कै हरि आया भाजिसी कै हरि ही पास गया। पृष्ठ 8:29। आई न सकौ तुझ पै, सकू न तुझ बुलाई, जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। पृष्ठ 8:10। भक्त निर्बल है, सदोष है, निसंबल है, उसमें इतना सामर्थ्य कहाँ कि वह अपने बलबूते पर प्रभु के समीप पहुंच सके। उसके पास इतनी पुण्य राशि कहाँ कि वह प्रभु को अपने पास बुला सके। अतः वह फिर प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु तुम ही मुझे अपने पास बुला लो, तुम्हारे अनुग्रह से ही मेरे अंदर उस बल का संचार हो सकेगा जो मुझे तुम तक पहुंचा सके या तुम्हें बुलाने योग्य वाणी दे सके। तुम मेरे पास आ जाओगे यह तो तुम्हारी महती कृपा है ही। गोस्वामी तुलसीदास ने भी के तो ही लागही राम प्रिय, के तू राम प्रिय होई कहकर भक्ति के इसी विविध मार्ग की ओर संकेत किया है। कबीर को यह भगवत कृपा ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गई थी, न जाने कितने दिनों तक वे वन वन ढूंढो नैन भरी जोऊं पद 371, बनी बनी फिरो उदासी पद 270 और कबीर वन वन में फिरा कारण अपने राम पृष्ठ 49 साधको अंग दोहा 5 इन साक्ष्यों के अनुसार स्थान स्थान पर भटकते फिरे, पर जिन खोजा तीन पाइया भटकते भटकते उन्हें गोविंद के समान गुरु प्राप्त हो ही गए। यह महत कृपा भगवत कृपा की ही एक अंग थी। इस कृपा ने उन्हें सफल मनोरथ बना दिया, वे पूर्ण काम हो गए। अपनी इस अनुभूति को उन्होंने नीचे लिखे दोहे में अभिव्यक्त किया है। कबीर कैसो की दया संसार घालिया खोई, जे दिन गए भगति बिनु ते दिन साले मोई। पृष्ठ 79 दोहा 11।